ग्लोबल समिट 2024 के इस प्लेनरी सेशन 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और आज की बहुत सुंदर थीम है कल्टीवेटिंग प्योरिटी ऑफ थॉट्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस, यानी कैसे हम अपने विचारों, दृष्टिकोण और कर्मों की शुद्धता को, पवित्रता को हम और विकसित करें, आगे बढ़ाएं। इस सुंदर सेशन का आज हम आगाज करते हैं और मैं मंच पर अपने सम्माननीय अतिथिगण, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आके मन करें। आदरणीय राजयोगी बीके मोहन सिंघल भाई जी, आदरणीय भ्राता पीटर कुमार जी जो खास यूएसए से आए हैं इस सेशन के लिए, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत अभिवादन है, आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजदीप रस्तोगी जी, अगर कोई हमारे मंचासीन अतिथि सभा में हो तो कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जी चिन्ना रेड्डी जी, परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज, आपसे भी निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजयोगिनी सुषमा दीदी जी, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज मंच पर पद्मश्री डॉक्टर विजय भटकर जी भी हैं, आपको भी मैं मंच पर आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, आप एमिनेंट मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। श्री सुशांत सिन्हा जी, आप भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आदरणीय लीना बहन जी, आप भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय सुषमा दीदी जी और भ्राता मोहन सिंघल भाई पहुंच चुके हैं, करतल ध्वनि से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय विजय भटकर जी भी, आप बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, खास पुणे से हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम उस परम पिता परमात्मा, उसका शुक्रिया करते हुए, उसको अपने बीच में बुलाते हुए उसका आह्वान करते हैं। 2 मिनट शांति से हम उस पिता को याद करेंगे।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ओम शांति। मेरा हमारी बहनों से अनुरोध रहेगा कि सम्मान के लिए बैजेस के द्वारा, पुष्पों के द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे मेहमानों का सभी बहनें आकर स्वागत करेंगे। मंच का स्वागत, शॉल के द्वारा हो रहा है। हम सभी अपनी तालियों के द्वारा आज के विद्वानों का स्वागत करते रहेंगे, सभी का उमंग उत्साह बढ़ाना ये भी भारत की संस्कृति की रीत रही है। पुष्प गुच्छ के द्वारा सम्मान हो रहा है। आज के इस मंच पर एक एक प्रभु रतन बहुत अनुभवी हैं, जो अपने अनुभवों के द्वारा आज हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, अपने वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहे। आदरणीय विजय भटकर जी, आप एमिनेंट इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं, बैजेस के द्वारा स्वागत हो रहा है। और ये बैजेस, ये मालाएं, ये पुष्प, ये ना सोचिए कि ये सिर्फ इस मंच के लिए हैं। आप सभी का भी दिल से, जो भी इस सभा में बैठे हैं उनका हृदय से अभिनंदन है, अभिवादन है। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाएं। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है, कल्टीवेटिंग प्योरिटी ऑफ थॉट्स। हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि पुष्पगुच्छ और बैजेस के द्वारा दीदी का सम्मान करें। कल्टीवेटिंग प्योरिटी ऑफ थॉट्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस। अगर आज के इस विषय को देखें तो शायद हम सभी जानते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। और जब भी कोई परीक्षा किसी दूसरे पर आती है, किसी दूसरे के पास कोई परिस्थिति आती है, तो हम ये बहुत जल्दी उनको ये राय भी दे देते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है तो कहीं ना कहीं मन में किसी तरीके की मिक्स चैरिटी आ जाती है। क्योंकि प्योरिटी की जब हम बात करते हैं, एक होता है सकारात्मक सोच, और जब उसी सकारात्मक सोच में किसी तरीके के वेस्ट या नेगेटिविटी का मिक्सचर हो जाता है तो उसी को नकारात्मक कहते हैं या नेगेटिव कहते हैं। और आज का ये जो सत्र है, ये एक तरीके से खुद को जानना, खुद को पहचानना, अपनी रियलाइजेशन का सत्र है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में बहुत सारी नदियां हैं। तो एक बार बंगाल में एक बहुत विद्वान व्यक्ति पहुंचे, थोड़ा गांव का भ्रमण करने गए, और वहां जब दूसरी जगह जाना था तो देखा एक नदी है। अब दूसरी जगह जाने के लिए नदी तो पार करनी ही थी, तो देखा एक नाविक खड़ा है, तो उससे बड़े प्यार से पूछा कि भैया पार करा दोगे? तो उसने कहा जी साहब बिल्कुल पार कराएंगे। तो वो उसकी नाव में बैठा और आगे बढ़ना शुरू हुआ। थोड़ा शाम का समय हो गया था, अंधेरा हो रहा था, तो उसे लगा चलो समय कैसे बीतता है, नाविक से थोड़ी बात करी जाए। तो उसने कहा ये ऊपर तुम आकाश में सितारों को देख रहे हो? तुमने कभी एस्ट्रोनॉमी के बारे में या सितारे कैसे काम करते हैं, चांद सितारे कैसे काम करते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हो? तो बेचारा भोला नाविक बोला नहीं साहब, मैं तो सिर्फ एक नाव चलाता हूं। तो उसने कहा ओहो, तुमने तो अपने जीवन का 25% गवा दिया। वो बेचारा जो नाविक था कुछ बोला नहीं, नाव चलाता रहा। थोड़ा नाव और आगे बढ़ी तो उसने कहा अच्छा ये सागर की लहरों को देख रहे हो? कुछ जियोलॉजी के बारे में मालूम है? ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, सागर की गहराई कितनी है, कुछ मालूम है? वो बेचारा फिर बोला नहीं साहब, मैं तो सिर्फ नाव चलाता हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो बोला कि तुम जब कुछ जानते नहीं हो, तुमने तो अपना 50% जीवन भी गवा दिया है। तो बेचारा चुप रहा, कुछ बोला नहीं। बोला अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, कुछ जानते हो? बोला नहीं साहब। तो बोला ओहो, तुमने तो अपना 75% जीवन गवा दिया। बेचारा फिर चुप होके अपनी नाव चलाता रहा। थोड़ी देर बाद मौसम बदला, बादल की गड़गड़ाहट, बहुत तेज मूसलाधार बारिश, इतना तेज तूफान कि उसकी जो नाव थी वो हिलनी शुरू हो गई। अब जब नाव हिलने लगी तो वो नाविक बहुत उससे कोशिश कर रहा था अपनी नाव को संभालने की, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया उसने कहा, साहब आप तैरना जानते हो? वो बोला, नहीं भैया। तो कहता है, ओहो आपने तो अपना 100% जीवन गवा दिया। और ये कह के वो कूद गया। अगर हम देखें आज भी शायद हम उस विद्वान व्यक्ति की तरह हैं, जहां हम सब कुछ जानते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, चांद सितारों पर क्या हो रहा है, नीचे सागर के तले में क्या हो रहा है, इनफैक्ट दूसरे के घर में क्या हो रहा है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, या हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है? क्या ये सचेत हैं कि कैसे संकल्प करने हैं, कैसी भाषा बोलनी है, कैसा दृष्टिकोण हर परिस्थिति में रखना है? और जब ये हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है, उसी को भी आध्यात्मिकता कहा जाता है। और इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में है आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंघल भाई जी। आप चेयरपर्सन हैं साइंटिस्ट इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग के माउंट आबू, और 55 वर्षों से अधिक समय से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं निमंत्रण देती हूं कि आकर हमारे सभी अतिथि गणों की वेलकम स्पीच करें आदरणीय राजयोगी मोहन सिंघल भाई जी।
ओम शांति। एक बार सब प्रेम से मिलकर बोलें, ओम शांति। धन्यवाद। मंच पर विराजित हमारे आज के सम्मानित मेहमान आदरणीय भ्राता विजय भटकर जी, राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी जी, सुषमा बहन जी, विश्व रॉय चौधरी जी, श्री जी चिन्ना रेड्डी जी, आदरणीय भ्राता राज दीपक रस्तोगी जी, परम संत हजरत हजूर कुमार साहेब जी महाराज, श्री मुरलीधर जी, भ्राता पीटर कुमार जी, लीना बहन जी, तथा सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, आज ग्लोबल समिट का ये चौथा सत्र है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ग्लोबल समिट कल्टीवेटिंग प्योरिटी ऑफ थॉट्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस, ये आज के जो फोर्थ प्लेनरी सेशन है इसका मुख्य विषय है। मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि यहाँ पर रहने वाले और जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी आते हैं, उन सब का भी जो प्रातः सत्र होता है जिसे हम मुरली क्लास बोलते हैं, वो मुरली क्लास का भी लगभग यही विषय था जो आज का विषय है। आज के विषय की मैं हिंदी करूं तो स्मृति वृत्ति व कृति में पवित्रता की धारणा, ये आज के विषय है। और जो हम सब लोग प्रातः क्लास 7 बजे से जो हमारी मुरली, जो ईश्वरीय महावाक्य होते हैं, उनका जो मनन चिंतन होता है, उसका भी मुख्य यही विषय था कि किस प्रकार से पॉजिटिविटी हमारी वृत्ति के अंदर आ सकती है। बहुत ही अच्छा विश्लेषण उस मुरली में किया गया था। वैसे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, देन ऑन द एक्चुअल फ्रंट। ये भी साथ में कहा जाता है कि वार के लिए भी, कि वार इज फर्स्ट फॉट इन माइंड, देन ऑन द बैटल फ्रंट। तो हर एक चीज का की उत्पत्ति सबसे पहले हमारी स्मृति वृत्ति मन के अंदर ही होती है, और मन के अंदर होने के बाद फिर उसका आगे आगे वाचा कर्मणा आदि आदि में विस्तार होता रहता है। यहाँ पर जो तीन बातें आज मुख्य विषय में ली गई हैं, स्मृति वृत्ति और कृति में पवित्रता की धारणा, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि इन तीन चीजों को अगर हम संपूर्ण रीति से देखें तो ये वास्तव में तीन के साथ साथ और तीन भी हैं। जहाँ एक तरफ स्मृति और वृत्ति का विश्लेषण किया गया है, तो हम जानते हैं कोई भी चीज वृत्ति होती है, स्मृति होती है, आंखों से उस चीज को देखा जाता है। तो स्मृति वृत्ति और दृष्टि बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन नैनों से जब हम चीज देखते हैं तो हमारे में मन में जो संकल्प होते हैं वो और गति को प्राप्त करते हैं। दृष्टि के बाद कृति आती है, हमारे हाथों के द्वारा जो कर्म होते हैं वो कृति, और इसके साथ साथ वो जब कर्म में आते हैं तो हमारी प्रवृत्ति के अंदर आते हैं, हमारे परिवार में, समाज में और पूरे सब कार्यों में हमारी प्रवृत्ति जो भी होती है कार्य व्यवहार उसमें आते हैं, और अंत में आता है सृष्टि। तो इसका शुरुआत जो होती है वो मन से होती है, स्मृति वृत्ति आदि से, और अंत सृष्टि अर्थात सृष्टि पर विराजित जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, जो हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते आए हैं। तो वसुधा में सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, वसुधा में मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, और साथ ही साथ ये 5 तत्वों की प्रकृति, ये सब मिला के हम एक पूरा वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना करते हैं, जिसके की ऊपर पिछले वर्ष ही 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा G20 सम्मेलन भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया था, आप सबने देखा भी है। तो इस विषय में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वृत्ति से जो चीज शुरू होती है, वृत्ति से वो वाइब्रेशंस बनते हैं। हम सबने अपने देवी देवताओं के चित्रों में देखा हुआ है कि उनके चारों तरफ एक ऑरा दिखाते हैं, लाइट, चाहे हिंदू देवी देवता हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी महान आत्माएं होके गई हैं उनका एक ऑरा होता है लाइट का आभामंडल, और उस आभामंडल से उस व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण होता है। जो आत्माएं महान होती हैं उनका आभामंडल बड़ा अच्छा लाइट कलर का गोल्डन वाइट होता है, और जो वैसी नहीं होती हैं, जिनके अंदर सामान्य मानव के अंदर काम क्रोध लोभ मोह आदि होते हैं, उनका वो डार्क कलर का होता है। इस विषय में मुझे और अधिक जानने को मिला जब मुझे लगभग 6-7 वर्ष पहले रशिया जाने का निमंत्रण मिला था, और वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ पर कि इस फोटोग्राफी जिसे किरलियन फोटोग्राफी कहा जाता है उसका हेडक्वार्टर है। तो वहाँ की जो निमित्त बहन जी थी उन्होंने उन्हें बुलाया था और उनके साथ डिटेल चर्चा करने का मौका मिला, तो उन्होंने हमारा भी ये सब लाइट का आभा मंडल, और केवल ये यहाँ ही नहीं होता है बल्कि हमारे हर अंग में एक एक उंगली में वो पूरे इंस्ट्रूमेंट लाए थे, इंस्ट्रूमेंट पे रख के वो उन्होंने सब वहाँ दिखाए। और उसके बाद चर्चा में उन्होंने बताया कि मेरे पास विश्व के सब तरफ के लोग आते हैं और वो अपना ऑरा निकलवाते हैं, चाहे सब देशों के, सब धर्मों के, कई देश धर्म उन्होंने गिना दिए। उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो हमारा वो भी एनालिसिस करके आए और उनके साथ और विशेष चर्चाएं हुई, तो उन्होंने एक बात बताई जो हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा मैं विश्व के लगभग सभी देशों के और सभी धर्मों का ऑरा निकालता हूँ, मेरे पास ब्रह्मा कुमार कुमारी भी आते हैं, बहन जी आते हैं, भाई लोग आते हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैंने दुनिया में लगभग सभी धर्मों का, सभी देशों का ऑरा निकाला है, आभा मंडल। लेकिन जितना अच्छा और स्पष्ट ऑरा बीकेस का होता है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, उतना विश्व के किसी देश और धर्म वाले का नहीं होता। बहुत अच्छी गौरव की बात थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी राजयोग सिखाते हैं उसको अंदर तक प्योरिटी तक पवित्रता पूरी की पूरी हमारे मन वचन कर्म में सब में आए, इस यहाँ तक ले जाते हैं। उन्होंने इस पर बहुत बातें बताई, अभी तो समय नहीं है, मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि मुझे परमपिता परमात्मा के जो साकार माध्यम थे, साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनके साथ रहने का मौका मिला 7 साल तक, लगभग 1962 में मैं ज्ञान में आया और 69 तक मिला। तो बाबा की ये वृत्ति दृष्टि कृति इतनी पॉजिटिव थी जिसके कारण उनके नैनों में दृष्टि में प्योरिटी ऐसी झलकती थी, जब पहली बारी हम मिलते थे तो बाबा बस आओ बच्चे, ऐसे हाथ फैला के आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसा कहते थे, और हम एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाह में चले जाते थे। इतनी पवित्रता बाबा की नैनों में और दृष्टि में थी, इतना आकर्षण था। लेकिन ब्यूटी तो और तब होती थी जब बाबा की बाह में गए और विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। ये थी ये वृत्ति दृष्टि कृति, इन सब का जो संपूर्णता है उसका बाबा ने काफी हद तक अपने अंदर प्रैक्टिस की थी। हम लोगों ने भी बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा है, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि बाबा ने जो अभ्यास किया था, पहला यही अभ्यास मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है जो उनकी युगल का नाम था, नारायण आत्मा है, आदि आदि सब बच्चों का सबका। तो बाबा जिसको भी देखते थे वो आत्मिक दृष्टि से देखते थे, और मुझे विश्वास है आपका जो राजयोग शिविर का पहला लेसन हुआ होगा आत्मा के ऊपर, कैसे आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच में रहती है, और जो आज के विषय को पूरा चरितार्थ करता है स्मृति वृत्ति और कृति में कैसे हम पवित्रता की धारणा कर सकते हैं। आप सब मंच पर बैठे महानुभावों का मैं पुनः स्वागत करते हूँ, और आशा करता हूँ कि वो सब का भी आपने पहला शिविर सुना होगा, और उस शिविर के ऊपर आप जब और अभ्यास करेंगे आपको भी ऐसे अनुभूति होगी, जब दूसरे की भ्रकुटी में देखेंगे, आत्मा में देखेंगे, उसका देह दिखाई नहीं देखा, और ऐसा अनुभव होगा कि ये पवित्र आत्मा है, पुरुष स्त्री माता पिता सबका भान भूल जाएगा। तो एक तो बाबा से इस बात का बहुत साकार अनुभव होता था, इसी कारण से बाबा के साथ मैं लगभग 6-7 साल तक रहा, बीच बीच में आते थे अपने जॉब से और देखते थे, बस बाबा जा रहे हैं, यहाँ आपको काफी सब आते हैं, भाई बहन कहते हैं बड़ी स्वच्छता है, हर चीज बहुत ऑर्डर में है, क्यों? बाबा ने हमको सिखाया, बाबा जाते थे इतने महान विभूति, फिर भी रास्ते में कहीं कागज पड़ा होता था, बाबा उठा के जब उस कचड़े बॉक्स में डाल देते थे। कोई भी आत्मा आती थी, कुछ भी कहते, बाबा के पास सदैव सब चीज के लिए सदैव समय होता था। और इतने विशालता से बाबा हम सबको हाथ फैला के सदा आदर करते थे। मैं एक बार पुनः आप सबको यहाँ सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सत्र और इसके बाद कल भी जो सत्र होने वाले हैं उसका संपूर्ण आनंद ले करके आप अपने अपने स्थानों पर वापस जाएंगे। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल भाई जी का। श्रेष्ठ संकल्पों को अगर जागृत करना है तो उसका आधार ही है आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन। और जैसे भाई साहब ने बताया कि जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते जाते हैं उतनी हमारी वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा भी प्योर होता जाता है और उसका प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने पारिवारिक जीवन पर, अपने कैरियर पर, सारे विश्व में उसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर पीटर पवन कुमार जी को। ही हैज स्पेशली कम फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। He is the President and CEO of Hospitality Company Virginia and he has been living in the USA for over 40 years and he is actively engaged in hospitality business and also assists in community services and humanitarian services. Aur aadarniya Peter Kumar ji ko apne shreshth karyon ke liye बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय पीटर कुमार जी को टू कम एंड गिव योर इनसाइट्स। आदरणीय पीटर पवन कुमार जी।
मंच पर उपस्थित वरिष्ठ भाई बहन, मेहमानगण और इस पावन भूमि, पवित्र भूमि पर पधारे हुए आप सभी देवियों और सज्जनों को मेरा स्नेह भरा, प्यार भरा प्रणाम, नमस्ते और ओम शांति। ये ग्लोबल समिट इतना शानदार रहा कि मैं विश्वास करता हूँ अभी तक सब सत्र का आपने पूरा फायदा और लाभ उठाया और आशा भी करता हूँ कि आगे वाले सत्रों से अंत तक आप पूरा फायदा उठाए और आपका जो समय निकाल के आया है वो सफल हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं कल्टीवेटिंग प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, यानी पवित्र मन और पवित्र सोच की कल्टीवेट कैसे करें। ये बहुत गहरी और डीप सब्जेक्ट है, फिर भी मैं दो चार बातें शेयर करना चाहता हूँ। थॉट्स क्या होता है, सोच संकल्प क्या होता है, ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अगर अच्छी थॉट्स रखेंगे हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होगा, ऊर्जा अच्छी होगी, और अगर ऑपोजिट है, बुरे थॉट्स है, तो हमें वो नीचे गिराएगा। और ये जो एनर्जी है ये आधार है हमारे एक्शंस का। आत्माओं में कितनी कैटेगरीज है, साधारण जीवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा और पापात्मा। इनमें से जो भी बनना है इसका शुरुआत है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा विचारधारा, हमारा सोच, जिससे ही हम इनमें से कुछ भी बन सकते हैं। और थॉट्स लीड टू स्पीच, स्पीच लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू हैबिट्स, हैबिट्स लीड टू कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनेशन। यानी यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से जो आरंभ होता है हमारी सोच, संकल्प, विचारधारा से, फिर वाणी से, वाणी थ्रू निकलेगा, और फिर कर्मों में आएगा, और फिर जो कर्म हम करते हैं उस थॉट्स के आधार पर वो हमारा स्वभाव संस्कार बनेगा, जिससे हमारा चारित्र कहा जाता है, और जिससे हमारा भाग्य तय होता है। हम जो सोचते हैं उस अनुसार करते हैं, वो हमें सौभाग्य भी ला सकता है, दुर्भाग्य भी ला सकता है। इन सभी चीज़ों का आधार है हमारा सोच विचार। क्यों ना हमारा मन और सोच विचार को हम पवित्र रखें। और हमारे सबके सामने दो एनवायरनमेंट है, एक जो एनवायरनमेंट हम रहते हैं और एक हमारा इनर एनवायरनमेंट है, मानसिक एनवायरनमेंट है। जैसे हम अपना एनवायरनमेंट जहाँ पे हम रहते हैं, लाइक अपना घर हो जिसको हम साफ सफाई करके स्वच्छ रखना चाहते हैं, वैसे इतना ही ज़रूरी है कि हमारा मानसिक एनवायरनमेंट, इसको भी हम इसी तरह साफ सफाई से स्वच्छ रखना है, यानी हमारे सोच शुद्ध और श्रेष्ठ रखना है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स, सोच का जो पवित्रता होता है, मन का जो पवित्रता होता है, वो वाइब्रेशंस को इंक्रीज करता है। जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, आप क्या महसूस करते हो, किस चीज़ की इबादत करते हो, वो है शांति की, क्योंकि यहाँ शांति का पुरुषार्थ होता है और मन की पवित्रता से सब काम किया जाता है। अगर आप यहाँ से जाकर के एक भीड़ भाड़ की जगह में, या तो एक रेलवे स्टेशन में जहाँ पे लोग भरे हुए होते हैं, वहाँ पे आप महसूस करेंगे तो ये शांति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब मन की पवित्रता की वजह से। और जहाँ तक की वाइब्रेशंस है, वायुमंडल पर असर होता है अपने थॉट्स की, एक कहानी याद आता है जो सच्ची घटना भी है। एक साधु थे और आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञानोदय और भगवान को पाने के लिए उन्होंने अपना वस्तु, वैभव, धन संपत्ति, घर बार सबको त्याग करके जंगल में चले गए, भगवान को पाने के लिए, स्थिर सुख शांति को पाने के लिए, ज्ञानोदय को पाने के लिए। और वे अपना पेट का जो होता है ज़रूरतें, वो इस तरह पूरी करते थे कि आसपास के गांव में जाके भिक्षा लेकर के खाते थे और उसमें सुखी थे। एक बार ये साधु का गांव में आने का एक चोर को मालूम पड़ा, तो चोर मन ही मन में सोच रहा था, अगर आज मैं साधु को बुला के खाना दूँ तो मेरा पाप भी कट जाएगा, मेरे लिए अच्छा भी होगा। इसी तरह उसने साधु जी को निमंत्रण दिया कि मेरे घर पे आके आप खाओ। साधु जी को कुछ मालूम नहीं था ये आदमी कौन है क्या है। इन्होंने स्वीकार किया और उसके घर पे भी गया। साधु ने खाना उसके हाथ में से पका के दिया और एक साधु के लिए चोर ने पका के दिया। और चोर के घर का वायुमंडल या वातावरण कैसे होगा, वो बिना चोरी और क्या सोच सकता है। तो इसमें प्रभावित हो गए। खाना पीना खाके साधु जी का नज़र एक स्टील लोटा या टम्बलर था उसके ऊपर गिरा। तो उन्होंने सोचा, अरे मैं तो हाथ में से पीता हूँ, अगर मेरे पास ये लोटा होता है तो कितना अच्छा है करके। जब चोर अंदर गया था, साधु जी ने वो लोटा उठा के अपनी झोली में डाल दी। कहने का भाव ये है कि अपना जो थॉट्स है उसका प्रभाव किसी पर भी पड़ सकता है और बहुत इफेक्टिवली भी पड़ सकता है। इसीलिए हम जो सोचते हैं, जिस सोच से कोई भी वायुमंडल बनाते हैं, उससे हम बहुत सावधान रखना है। हमें चारों ओर शांति फैलाना है, ना कि कोई और बदबू। कहीं पर अगर बदबू है तो अगरबत्ती जलाएंगे तो बदबू निकल करके खुशबू आएगा। इसी तरह मन की पवित्रता और सोच की पवित्रता से रूहानी खुशबू फैलेगी और हमें इस तरह की रूहानी खुशबू फैलानी है। और इन सब चीज के लिए हमें ज्ञान चाहिए। और यहाँ पर हमारा शिव बाबा जो है, हमारा सतगुरु है, जो हमें सदगति और ये रोज की शिक्षा दे रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। तो भगवान से हमें शिक्षा लेना है ताकि हम पवित्र बने और एक पवित्र दुनिया की सृष्टि करें। जब हम पवित्र बनेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन आएगी, तब इस दुनिया भी परिवर्तन होगी। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह अगर मन को पवित्र रखना है, अपने सोच धारा को पवित्र रखना है, तो हमें नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है। और हर वक्त हमें कुछ भी इंस्पायरिंग और अपलिफ्टिंग बातों को हमें खींचना है और याद करना है और मेडिटेशन करना है। और हमारा मन एक गार्डन है, गार्डन में जो हम डालते हैं वही उगेगा। अगर सुंदर फूल का बीज डालेंगे सुंदर गार्डन बनेगा, अगर कांटे का कुछ भी डालेंगे तो उसमें कांटे ही भरेंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, सावधान रखना है कि मन का गार्डन को हम किस तरह कल्टीवेट करें। और डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, थॉट्स तो आता ही रहता है, उसका काम ही आने का, लेकिन हमारा काम है उन थॉट्स को कंट्रोल करना है, डायरेक्ट करना है, जो हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। कुछ भी काम करते रहते हैं, एक मिनट के लिए हम छोड़ के हम भगवान का स्मरण करते हैं, जिससे हमारा मन क्लियर होता है और शुद्ध होता है। और इसी से मैं मेरी चार बात को समाप्त करता हूँ। और आप लोग कहीं कहीं से यहाँ पे आए हो इस समिट में, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइए, खूब भर भर के इन ज्ञान रत्नों को आप वापस ले जाइए। और हो सके तो एक विनम्र निवेदन है, आज से ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आपकी सोच विचार का धारा पवित्र रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे और नकारात्मकता से दूर रहेंगे और रूहानी खुशबू फैलाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीटर कुमार जी। और जैसे आप सभी से उन्होंने प्रतिज्ञा कराई कि अपने जीवन को और सुगंधित बनाना है ज्ञान और गुणों से, और इसी प्रतिज्ञा में और जोश भरने के लिए आप सभी का, हम सभी का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए एक बहुत सुंदर नृत्य आ रहा है। डॉक्टर श्री विद्या मुरलीधर और उनका ग्रुप हम सभी के आगे एक बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति करेगा, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उनके ग्रुप को।
त्रैलोक्य शुभकर संज्ञाताण्डव प्रिय पाहि मां भव भय हर शम्भो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संज्ञाताण्डव प्रिय पाहि मां भव भय हर
தக்கத்தக்கம் கதிங்கிறது தக்க தஜம் கதிங்கிறது தக்க
बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर श्री विद्या मुरलीधर ग्रुप जी, ये खास मैंगलोर से आए हैं और जो भी कल्चरल ग्रुप्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रस्तुति दी है उन सभी के सर्टिफिकेट्स वो आके बैक स्टेज पर ले सकते हैं। हम सभी ग्रुप और ग्रुप के मेंबर्स का को निमंत्रण देते हैं, आदरणीय राजयोगी भ्राता मृत्युंजय भाई जी और आदरणीय सुषमा दीदी जी, डॉक्टर श्री विद्या मुरलीधर जी और जो उनके साथी हैं जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है उन सभी का बैजेस और मेमेंटो के द्वारा, शॉल और मेमेंटो के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा एक एक उनका जो स्टेप था सिंक्रोनाइज जो था, ताल में ताल थी, ये भी हम सभी को प्रेरणा देके जा रहे थे कि जब हमारे हर संकल्पों में ताल से ताल मिलता है, जब उसमें एक पवित्रता होती है, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, तो जीवन कितना, जैसे नृत्य इतना सुंदर लग रहा था ऐसी जीवन भी हमारा बहुत सुंदर हो जाता है। आदरणीय सुषमा दीदी जी और आदरणीय शुक्ला दीदी जी, टीम के सभी मेंबर्स का सम्मान करते हुए शॉल के द्वारा और सभी को बहुत सुंदर एक मेमेंटो की प्रस्तुति हो रही है। सभी जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी बी इन छोटी कन्याओं का और जो हमारे उसमें एक भाई हैं उनका विशेष हम उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। जैसे कहते हैं जीवन में जब तक संगीत नहीं होता है तब तक कोई भी कार्य ऐसा नहीं लगता कि कोई पूर्ण हुआ है, उसी तरीके से जब हमारे जीवन में वो पवित्रता नहीं होती, गुणों और शक्तियों का समावेश नहीं होता है तो जीवन भी अधूरा हो जाता है। सभी टीम मेंबर्स का अभिवादन करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट जारी रखिए। ये एक बहुत स्पेशल एक्सरसाइज भी है क्योंकि आज आपने कई सेशंस भी किए हैं तो जो हमारे अंदर की निद्रा है वो भी क्या होगी, वो भी दूर हो जाएगी। एक एक नृत्य को बनाने में, उसको प्रेजेंट करने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत डिसिप्लिन जाता है। उसी तरीके से अपने जीवन का निर्माण करने के लिए भी जिस डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है वो राजयोगा मेडिटेशन हमको सिखाता है। जो सत्र आपने राजयोगा मेडिटेशन के किए भी, और सभी टीम मेंबर्स एक साथ हमारी दीदियों और बड़ों का आशीर्वाद और उनका सम्मान प्राप्त करते हुए और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए आप सभी इन यहाँ पे आए हैं शांति वन में, और यहाँ की वाइब्रेशंस को आप सभी अनुभव भी कर रहे होंगे, लेकिन इसमें अपना एक रूहानी खुशबू फैलाने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज। परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज हरियाणा प्रांत के जिला भिवानी के दिनोद गांव में प्रतिष्ठित राधा स्वामी सत्संग आश्रम के हाजिर मौज हैं, और आपके मार्गदर्शन में राधा स्वामी सत्संग ने 12 शाखाओं से 60 शाखाओं तक विस्तार पाया है, और खासकर विदेशों में कनाडा, अमेरिका और लंदन में भी आपके आध्यात्मिक केंद्र हैं, और आप सामाजिक सुधार के लिए भी कई कार्य करते हैं, नशा मुक्ति, मांसाहार त्याग, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जैसी सामाजिक कई कार्य आप करते रहते हैं। तो आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज हमारे बीच में हैं, हम आपसे आपके आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना चाहेंगे।
आदरणीय मंच, श्रोतागण, हम हरियाणा से आते हैं। राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं, और ये कोई अलग मत नहीं है। संत मत में जितने भी पंथ, मजहब, धर्म आते हैं, ये भी उन्हीं की तरह से इंसान को बुराइयों से बचा के अच्छे गुणों को अपनाते हुए प्रभु की भक्ति के मार्ग पर ले जाने का एक सुगम रास्ता है, जिसमें ज्ञान योग, हठ योग, तप योग, भक्ति, सभी प्रकार की क्रियाएं हैं। मुख्य रूप से हम सुरत शब्द योग के अभ्यासी हैं, और शब्द भक्ति जिसको सब मतों ने, सब धर्मों ने और सब संतों ने बताया है, सबकी शिक्षा बहुत अच्छी, इंसान को प्रभु भक्ति की ओर लगाने वाली है। यहां आने के बाद हमें बहुत अच्छा अवसर ही नहीं मिला, बल्कि देख के मन को एक बहुत ही शांति और विशेष प्रकार का प्यार मिला, जिसको पाके हमें लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए। यहां ब्रह्मकुमारी बहन भाई जितने भी मिले उनके देखने मात्र से, मिलने से, वार्तालाप चर्चा करने से, सभी के वचन में और शब्दों में प्यार, शांति और सत्यता झलकती है। और ऐसे हालात में अगर कोई भी दूसरे ख्यालात और विचार का इंसान आता है तो उनको भी देख के ऐसा ही लगेगा जिस प्रकार से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है। बड़ी उच्चकोटि की बात है और बड़ी विचारणीय भी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध, अपने कार्यों को पवित्र और अपनी भावनाओं को अच्छा और सच्चा कैसे बनाए। अगर यही बात इंसान की सुधर जाती है, अच्छे गुण आ जाते हैं, सब बुराइयां दूर हो जाती हैं, तो वो इंसान नहीं रहता, वो देवतुल्य तो तभी बन जाता है। वैसे तो इंसान का दर्जा देवताओं से भी ऊंचा है, लेकिन क्योंकि इस काल और माया के देश में आने के बाद विचारों की मलिनता ने इसको थोड़ा अपने सतर से नीचे गिरा दिया, लेकिन समय समय पर महापुरुष एक उद्देश्य लेके यहां प्रकट होते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं सत्य का, भक्ति का और जीवन को सुधार का। अब बात आती है कि हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार जो पैदा होते हैं उनका कारण क्या है। उनके लिए एक बात नहीं होती, कहीं अन्न दोष होता है, कहीं संग दोष होता है, कहीं स्थान दोष होता है, कहीं वैचारिक दोष होता है। अनेक प्रकार के लोगों से मिलना होता है, अनेक प्रकार की चीजें हम दुनिया में देखते हैं, देखने से, सुनने से, बोलने से और विचार करने से, वार्तालाप करने से हमारे मन पर उन बातों का बहुत असर पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छी और पहली चीज है कि इंसान का खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 5 कोष हैं और उनमें पहला कोष है अन्नमय कोष, और अन्न जब शुद्ध और पवित्र होगा, सुना होगा आपने कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन भी हो जाता है, जैसा मन होगा उसमें वैसे ही विचार भी बनेंगे और जैसे भी विचार होंगे उनका तत्व निकल के उनका ज्ञान भी वैसा ही होगा, और उसे ज्ञान का भी सार निकलता है तो उसके विज्ञान में उसके सोच और ख्यालात वैसे ही बन जाते हैं और उसी से आनंदमय कोष बनता है जिससे इंसान को शांति मिलती है, विचारों की शुद्धता और पवित्रता आती है। जब अन्न शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अन्न बनाने वाला कौन है, अन्न आया किस तरीके से है, अगर वो किसी गलत तरीके से कमाया गया है, किसी गलत व्यक्ति से लिया गया है, अन्न को बनाने वाले के विचार कैसे हैं। इसीलिए जब संत महात्माओं के आश्रमों में आप जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं, अगर बाहर से कहीं लेके आते हैं तो उसको उसकी चीज के नाम से पुकारते हैं, कोई लड्डू कहता है, कोई बर्फी बोलता है, कोई उसको पतासे बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जब वहां आता है तो उसको प्रसाद हो जाता है, क्योंकि शुद्ध और पवित्र रूह जब उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं उनके जैसे ख्यालात होते हैं उस ख्यालात का असर भी उस चीज पे पड़ता है। अब अन्न को बनाने वाले के विचार और ख्यालात कैसे हैं? अगर कोई एक इंसान दुखी मन से प्रसाद बना के देता है, खाने वाले के कभी विचार अच्छे नहीं हो सकते। अगर कोई रोते हुए किसी प्रसाद को तैयार करता है तो खाने वाले को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए ये अन्न और आया किस प्रकार से है, अगर वो किसी गलत तरीके से, कोई चोरी से, कोई हेरा फेरी से, या किसी को परेशान करके, या कोई दूसरे रास्ते से वो अन्न लाया गया है, ऐसे अन्न के खाने से उस इंसान के कभी भी विचार अच्छे नहीं बनते। तो पहली चीज है कि इंसान को अन्न शुद्ध और पवित्र होगा तो उसके विचार क्या, उसका जीवन ही पवित्र हो जाएगा, और उसी से हमारे सारे भावनाएं भी, हमारे कर्म भी वैसे ही बनेंगे। क्योंकि जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, उसको विपरीत चीजें फिर अच्छी नहीं लगती, उनको फिर दूसरी जो चीजें जिनको हम नकारात्मक सोच कह सकते हैं, जिनको पाप कर्म भी कह सकते हैं, जिनको हम बुरी भावना कह सकते हैं, वो फिर अपने आप ही दूर चली जाती है। इसलिए हमें चाहिए संग भी अच्छा होना चाहिए। इंसान जैसे लोगों का संग करता है, चाहे आप लाख अच्छे कर्म करते रहो, लेकिन किसी के साथ बैठोगे तो काजल की कोठड़ी में कितना भी चतुर और सियाना इंसान जाता है तो भी कहीं ना कहीं उसको छोटा मोटा दाग लग ही जाता है। जाने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके आप कहोगे कि मैं उनके साथ बैठ के कुछ करता ही नहीं हूं, मैं वो जो काम करते हैं वो नहीं करता, लेकिन अगर उनका संग करोगे तो कभी ना कभी वो दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हमारे विचारों को जरूर विचलित कर देंगे, तो हमारे मन में कभी भी उन चीजों को निकालने का फिर अवसर नहीं मिलता। इसलिए महापुरुषों का संग करोगे, महापुरुषों के दर्शन करोगे, उनके पास जाके उनके वचन को सुनोगे, वो अपनी तरफ से जो अपने शुद्ध विचारों के और तुम्हारे ऊपर जो दृष्टि डालेंगे, उनके अंदर जो शक्ति है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी, वो हमें शांति देगी। जिसकी वचन में शांति नहीं है वो दूसरे को शांति नहीं दे सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने नाम की कमाई की है। प्रभु का गुण ये है कि जो उनके दर्शन पाता है वो दर्शन करके उसको सुख शांति खुशहाली हर प्रकार से सुखी रहता है। इसीलिए तो हम सारे काम छोड़ के भी चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति करें, उनके दर्शन पाएं। सारी चीजें संसार की मिल जाएंगी लेकिन शांति नहीं मिलती है। हम यहाँ आके बोलते हैं ना ओम शांति, ओम शांति का मतलब यही है कि हमें प्रभु शांति दे, और उसके नाम के जाप से, दूसरे नामों के लेने से आपको शांति नहीं मिलती। क्योंकि शांति शांति कहने से ही हमें शांत वातावरण, शांत मन की भावनाएं होती हैं, और मन की शुद्धि और पवित्रता भी इसी नाम से होती है। इसीलिए बार बार उस नाम का चिंतन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, हमारे हृदय से उसका विचार करना चाहिए। अब यूं तो जवान से कहते रहे, भेष बदल लेने से कुछ नहीं होता, इंसान के कर्म पवित्र होने चाहिए, और कर्म जब पवित्र होंगे तो सब अपने आप ही शुद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन उसकी शुद्धि के लिए ये है कि इंसान हर प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से, किसी को दुख ना दे, किसी के बारे में बुरा ख्याल ना रखे, जबान से हमेशा मीठा और अच्छा बोले, सबके साथ मित्रता का जो व्यवहार करता है, प्रेम का बर्ताव करता है, वो दूसरे को भी शांति देता है, अपने को भी शांति देता है। मीठा वचन ऐसा एक मंत्र है जो दुश्मन को भी अपना बना लेता है, बुरे से बुरे आदमी को भी सुधार देता है। किसी को भी कभी अपनी जबान से बुरा ख्यालात नहीं देना चाहिए। वचन में बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए महापुरुषों के पास जाके हम कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद वो हमें अपने बूढ़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, हमारे से जो भी उम्र दराज हैं, या प्रभु की भक्ति करने वाले हमसे पहले से ही जो इस लाइन में लगे हुए हैं, उनके संग बैठेंगे, उनके विचार सुनेंगे तो हमारे विचार अपने आप पवित्र होंगे। इसीलिए महापुरुषों के बारे में कहा है कि दर्श करें, वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुने, गुण गुण के कार्ड ले सार, कार्ड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। ये चीजें जब दूर हो जाती हैं तो भक्ति कोई मुश्किल बात नहीं है। हम चाहते हैं ध्यान लगाना, कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कहाँ करते हैं? बातों से मेडिटेशन होती नहीं है। मेडिटेशन जब होगी, जब हमारे विचारों का सोच विचार रुक जाएगी, जब हमें कुछ दुनिया में दूसरी चीज की तरफ ना हमारा मन जाएगा, ना हमारा ख्याल जाएगा, ना खाली हो जाएंगे अंतर से, सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी और वो चीज प्रकाश में बदल जाएगी। और वो कब स्थापित होगी? जब मन पवित्र होगा, विचार शुद्ध होंगे, कर्म हमारे अच्छे होंगे, और ये तीनों चीज जब अच्छी होंगी तो अपने आप ही हमारा शांत, हमारे चेहरे की आभा, जैसे कि हम सबसे पहले जो सिंगल साहब ने बताई थी बातें, उन्होंने कहा था कि आभा ओरा जिसको बोलते हैं, उसको चेहरे से ही झलकती है, वही शांति दे देता है। तो दर्शन में बड़ी ताकत होती है। एक इंसान के दर्शन करते हो शांति मिलती है, दुष्ट आदमी के दर्शन करते हो आदमी के विचार बदल जाते हैं। तो महापुरुषों के संग में जाके उनके दर्शन करो, उनके विचार सुनो, उनसे आशीर्वाद लो और दुआ करो कि वो आपके भी विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाएं और मालिक आप सबको भक्ति करने की शक्ति दे, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दुआ, मालिक आपको शांति दे, प्रभु की भक्ति में लगाए, बुरे ख्यालात और दूसरी बातों को त्याग के अपने सद्गुणों का संचार आपके हृदय में हो और आपका जीवन पवित्र हो और दूसरे लोगों के लिए आप एक मिसाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। राधास ओम शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज। और आपने बहुत सुंदर विचार रखे, लेकिन जैसे परमात्मा कहते हैं हम सभी आत्माएं हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, मत पंथ के हों, लेकिन हम सभी का मालिक, हम सभी का परम पिता परमात्मा, वो स्वयं परम पिता परमात्मा हैं, सुप्रीम अथॉरिटी। और जैसे भाई साहब ने कहा, उसको याद करने के लिए हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। और अभी हम आदरणीय परम संत गुरु जी का सम्मान करेंगे। आप खास हमारे शांतिवन में आए हैं, आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब और आदरणीय सुषमा दीदी और आदरणीय शुक्ला दीदी जी, आपका सम्मान कर रहे हैं। आपके बहुत ही सुंदर विचार, आपकी नम्रता, और जैसे कहा जाता है मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलता। तो आप यहाँ आए, आपकी वो सरलता, आपकी वो नम्रता, आपकी वो मधुरता, वो आपके व्यक्तित्व से दिखाई देती है। और साथ में हम सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय श्री राधे श्याम गर्ग जी का। आप खास चंडीगढ़ से आए हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सोनाला पेंट्स के, और विशेष इस आध्यात्मिक मार्ग में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका भी मेमेंटो के द्वारा और माला के द्वारा स्वागत है। और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विजय भटकर जी भी हैं। आप एमिनेंट इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और एजुकेशन की फील्ड में भी आपने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उस योगदान के लिए आपको खास ज्वेल ऑफ भारत से, ज्वेल ऑफ भारत अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आप पद्मश्री भी हैं, पद्म भूषण भी हैं, खास सरकार ने आपको आपके विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया है, लेकिन इस परमात्मा के घर में आप आए हैं, आपको भी हम आपकी सेवाओं के लिए माला से और मेमेंटोस के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। आपको ज्वेल ऑफ भारत अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से हमारे जितने भी अवार्डीज हैं उनका मनोबल, उनका इस सम्मान में आप भी उनके साथ शामिल हो। और हमारे बीच में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी हैं, आप एमिनेंट मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपका भी इस मंच पर गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। We sincerely acknowledge your dedication and commitment to promote ancient medical care wisdom. Viswaroop Roy Chaudhary ji, aap plant based meal plan ko promote karte hain और कहा जाता है कि जितना आप इस डाइट को धारण करते हैं उतना आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है, और खास तौर से जो हमारी बीमारियां हैं उनको जितना हम प्राकृतिक रूप से हम उनका समाधान ढूंढते हैं तो उतना ही हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। आपको खास गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और साइटेशन भी आपको दी गई है। और हमारे बीच में है आदरणीय श्री सुशांत सिन्हा जी, आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं टाइम्स नाउ नव भारत से। आप सभी ने सुना होगा उनके चैनल पर एक बहुत विशेष कार्यक्रम आता है न्यूज की पाठशाला, और इस कार्यक्रम ने अनेक पूरे देश भर में अनेक आत्माओं के दिल में अपनी जगह बनाई है। बहुत विशेष आपका कार्यक्रम रहता है न्यूज की पाठशाला, उसके लिए आपको विशेष राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। Now I would like to call upon Dr. Vijay Bhatkar ji to share few words of wisdom.
आदरणीय सभी हमारे गुरु, हमारी बहनें और आप सभी, मैं यहां आने से पहले मुझे दादी गुलजार जी के कमरे में मेरा दर्शन करवाया गया। मेरी कई यादें हैं उनके साथ। तो जब सुनीता दीदी और सुनील भाई ने उनका दर्शन किया गया, दर्शन के लिए मुझे लाया है, तब मुझे याद है कि उनके माध्यम से मुझे बाबा ने जो शब्द मेरे कानों में कहे थे वो थे, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, साइंस जीता हूँ, बोला कि बेटा आपको साइंस और साइनेस को एकत्र लाना होगा। तब मुझे समझा नहीं था कि साइंस और साइनेस एक ऐसा एकत्र हो सकता है, और उसका मुझे उसके जो अनुभूति हुई उसके बाद मुझे उसकी अनुभूति हुई कि एक साइंस एंड साइलेंस एक ही है। मैं आजकल एक बुक किताब लिख रहा हूं, एक ग्रंथ नहीं बोल रही कि ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड कितने ब्रह्मांड है, एक है कि अनेक है। मैंने ये जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है उसका नाम रखा था मल्टीवर्सिटी। एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ये यूनिवर्स एक ही नहीं है, ये यूनिवर्सेस आर कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड कंटिन्यूअसली ऐसे एनिहिलेटेड, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, दिस प्रोसेस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स इयर्स टुगेदर। तो मुझे लगा कि साइलेंस ही एक विशाल एनर्जी जो क्रिएट होती है, दैट इज ग्रेट क्रिएटेड फ्रॉम डीप साइलेंस। और मुझे वो समझना होगा कि हाउ दिस साइलेंस एंड साइंस कम टूगेदर। ये बड़ी महान खोज है जो बाबा ने मुझे बताई, और इस खोज में आज के जो विषय है कि वो उसकी मानव जब हम डीप खोज करते हैं, द साइलेंस क्रिएट्स द एंटायर ब्रह्मांड एंड मेनी ब्रह्मांडस विच आर कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड एनिहिलेटेड एट द सेम टाइम। मैं सोचने लगा कि थॉट्स, व्हाई प्यूरिटी ऑफ थॉट्स इज इंपॉर्टेंट, एंड बिहाइंड द प्यूरिटी ऑफ थॉट्स आर देयर इंटेंशंस। आपकी सोच क्या है, इंटेंट क्या है, उसमें भी काफी रिसर्च हुआ है कि योर इंटेंशंस डिसाइड योर फाइनल एक्शंस, नॉट द। सो जो विषय है ये बड़ी सोचने लायक है कि हाउ आवर इंटेंशंस डिसाइड। आई मे हैव सम थॉट्स विच मे लीड टू मर्डर, माय इंटेंशन इज मर्डर, बट आई मे प्रिटेंड टू एक्ट इन ए डिफरेंट मैनर। सो इसे डीप साइंस मुझे लगता है उसके बारे में हमें सोचना होगा। मुझे और भी एक विषय है मेरे में कि दिस एंटायर यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग, जो हम देख रहे हैं, हम शांत है समझ लो, हम मेडिटेट कर रहे हैं, बट देन देयर होल गैमट ऑफ यूनिवर्सेस विच आर देयर, दे आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, एंड इंटेंशंस क्रिएट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। क्यों हमें साइलेंस में जाने को कहा जाता है ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड दे विल डिसाइड अवर एक्शंस, फाइनल एक्शंस. सो देर इज अ डीप साइंस हिडन इन मेडिटेशंस, इन डीप मेडिटेशंस विच वी अंडरस्टैंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट पीपल, ग्रेट मेडिटेटर्स. And this will decide the future of not only ours, the all of the universes which are continuously vibrating. We have to understand. मुझे पता है जब मुझे कहा गया था कि बेटे आपको साइंस और साइलेंस को एकत्र होना होगा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या होगा, आपको जो रिसर्च करना है वो है डीप मेडिटेशन ऑन साइलेंस एंड साइंसेस, साइंस. मैं इसमें बात में सोच रहा हूं, कई बात मेरे सामने आती है. हमारी जो संस्कृति है, हमारे वेदों का जो क्रिएशन है, ये कैसा हुआ? दैट वॉज क्रिएटेड बाय ऋषिज एंड मुनीज गेटिंग इन टू डीप साइलेंस. And from that emerge your Vedas. From that emerge your Upavedas. From there, Vedanga. The entire sciences of this Bharat Bhumi, the Rishis have been able to create, have come about from deep silence, deep meditation. And that's why we are taught to get into that deep, experience that deep silence and come out with newer and newer discoveries and newer and newer innovations which we are trying. I am trying to practice this, trying to understand this phenomena, this amazing phenomena, that there are so many universes. Some universes are still being created and continuously created, and they will be annihilated into deep silence once again. So by coming here, my memories of Dadi Gulzarji ke through jo mujhe bataya gaya, बाबा जी ने, बाबा ने बताया, तो उसके सर्च में अभी भी हूं, वो क्या है मुझे हमें समझना होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस मोमेंट्स ऑफ साइलेंस. थैंक यू.
Thank you, brother, for sharing your invaluable experiences. Now I would like to call upon Dr. Biswaroop Roy Chaudhary ji, eminent medical nutritionist. Brata ji, aakar apne anubhavon ko hamare saath saajha karein. Jaise kaha ki aap plant-based meal diet इसको प्रमोट करते हैं, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे.
मुझे किस पर दिक्कत आ रही है? ओम शांति भाई और बहनों, मेरे लिए बड़ी बात है कि आज मैं आप सबके बीच में यहां पे स्टेज पे इस मंच पे हूं. चार मिनट का समय दिया है, तो इस चार मिनट में मैं तीन बातें आपको बताना चाहूंगा. अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो स्क्रीन में क्योर एट द रेट 72 आवर्स. क्या करें कि हम फटाफट ठीक हो जाएं? खास तौर पे जो लोग आलसी है वो क्या करें? पहली बात तो दवा क्या होती है, मेडिसिन क्या है. अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब सिर्फ टैबलेट, कैप्सूल, टॉनिक ही नहीं, कोई भी ऐसी साइंस जो आपको क्योर रहने में, करने में, या दवाई या बीमारी को प्रिवेंट करने में मदद करती हो, उसे हम मेडिसिन बोलते हैं. तो ऐसे ही तीन दवाइयों का मैं जिक्र करूंगा. अभी अगले तीन चार मिनट में। पहली दवाई टाइम एज मेडिसिन, ये दुनिया की सबसे पावरफुल दवाई है। टाइम एज मेडिसिन से क्या प्रभाव होगा अगर इसको आपने आज से शुरू कर दिया। करना सिर्फ इतना है, सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं, रात शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं, यानी कि डिनर आपको शाम के 6 बजे से पहले फिनिश कर देना होगा। 6 बजे के बाद पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खाना नहीं है। कम खाने नहीं बोल रहा हूं मैं, अलग खाने नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं योर ईटिंग ब्रैकेट इज बिटवीन 8 AM to 6 PM। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमने अपने हॉस्पिटल में ये देखा है, हमारे 20 हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से, कि ये एक बदलाव से बाय द टाइम इट इज 1 week to 10 days, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर कॉन्स्टिपेशन गायब होने लगती है, एसिडिटी गायब होने लगती है, ब्लोटिंग गायब हो जाती है, नींद बढ़िया होने लगती है। लेकिन अगर 15 दिन से अधिक करने लगे तो ज्वाइंट पेन गायब होने लगता है। अगर 21 दिन से अधिक होने लगे तो ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर अपने आप नीचे आने लगता है, जिनका ज्यादा होता है उनको दवाई छोड़नी उनकी मजबूरी हो जाती है। और कहीं अगर आपने एक महीना भर कर लिया तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसका पेन लगभग हार्ट अटैक के बराबर का ही होता है, वो ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है। और साथ में आपका वेट, जो लोग मोटे हैं ऑन एवरेज मैंने देखा है 5% वेट आपका ड्रॉप होने हो जाता है। तो दैट इज द टाइम एज मेडिसिन, सिर्फ इतना ध्यान रखना है सुबह 8 बजे से पहले क्यों कुछ ना खाएं और शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। इसके पीछे का साइंस क्या है वो जिनको समझने में रुचि है तो वो मेरी किताब ये पढ़ सकते हैं bishwaroop.com/ebook में जाके, तो आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट पता चली जाएगा। लेकिन आप में से वो लोग जो जल्दी में हैं कि भाई ये तो एक महीने का पूरा एक टाइमलाइन हो गया, जिनको 2-3 दिन में ही रिजल्ट चाहिए, तो इस टाइम एज मेडिसिन के साथ एक दवाई और जोड़िए, दूसरी दवाई, दैट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको DIP डाइट का थोड़ा बहुत आइडिया है? आप में से किसी ने सुना है पहले? यहां तो हाथ रेज है, उधर कुछ हाथ रेज है, यहां भी मैं देख रहा हूं, धन्यवाद, थैंक यू। तो DIP डाइट अगर आप टाइम एज मेडिसिन के साथ जोड़ दें तो हमने ये देखा है पिछले 14 सालों में कि पहले 72 आवर के अंदर ही, पहले 3 दिन के अंदर ही ब्लड शुगर नीचे आने लगता है इतनी तेजी से कि दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है, इंसुलिन को टेपर डाउन करना जरूरत हो जाती है। लेकिन अगर DIP डाइट अगर 3 से 7 दिन तक करें तो ब्लड प्रेशर 3rd दिन के अंदर अंदर इट स्टार्ट ड्रॉपिंग, तो यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई भी छोड़ना जरूरी हो जाता है। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आने लगता है बड़ी तेजी से। इंटेस्टाइनल जितने भी डिसऑर्डर हैं विद इन अ वीक्स टाइम उसमें भी क्लियर रिस्पॉन्स आता है और वो ठीक होने लगता है। लेकिन कहीं अगर आपने एक महीना कर लिया DIP डाइट तो 10% वेट लॉस होता है ऑन एवरेज, जो लोग मोटे हैं फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड 5% टिल यू अचीव योर नॉर्मल BMI। जो एंजाइना अगर है, चेस्ट पेन वगैरह है, तो 1 महीने में वो गायब हो जाता है, हमने ये देखा है। थायराइड डिजीज अगर किसी को है तो 2 महीने के बाद अगर आप थायराइड चेक कराएंगे तो आप देखेंगे कि थायराइड आपका नॉर्मल की तरफ आ गया या बिलो नॉर्मल आ गया। और अब अगर आपने थायराइड की गोली नहीं छोड़ी तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में भी बदल सकता है या बदल जाता है। मतलब ये कि दवाई छोड़ना आपकी जरूरत हो जाएगी। 6 महीने तक कहीं कर लिया तो हमने देखा अपने पेशेंट्स में कैंसर में उनको क्लियर इंप्रूवमेंट दिखता है, उसकी इनहेलर छूट जाता है अस्थमा के पेशेंट्स का और बॉडी पेन गायब हो जाता है अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं। 8 महीने तक कर लिया तो हमारे सबसे ज्यादा पेशेंट किडनी डिजीज के होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, उनकी किडनी रिवर्स हो जाती है, उनकी किडनी फंक्शनिंग ठीक होने लगती है, ठीक हो जाती है। स्किन डिसऑर्डर में क्लियर बेनिफिट दिखता है, लिवर डिसऑर्डर में क्लियर बेनिफिट दिखता है। 3 महीने के अंदर आंखों से जुड़े हुए जितने भी, चाहे वो कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, या आप में से कई लोगों ने चश्मा पहना है तो इसमें वी हैव सीन कि कैटरैक्ट गायब हो गया, ग्लूकोमा ठीक हो गया, चश्मे की जरूरत बिल्कुल खत्म हो गई, ये बहुत कॉमनली हमें दिखता है। और इवन हार्ट वॉल्व के जेनेटिक डिफेक्ट में भी सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट दिखते हैं इफ व्हेन द पेशेंट दे डू इट बिटवीन 9 months to 1 year। तो ये टाइमलाइन जो हमने इस कलेक्ट किया है हमारे हॉस्पिटल से और पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस से, तो आपको ये दोनों दवाई जोड़नी है। लेकिन एक तीसरी दवाई कर बता के मैं इसको कंक्लूड करूंगा, जो इसके बिना जोड़े बिना थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा. द थर्ड इज डीआईपी डाइट. क्या है ये बता दूं पहले. डीआईपी डाइट बड़ा सिंपल है. 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, 3 से 4 तरह के फल अपने वेट अनुसार. मेरा वेट 70 केजी है, एक और शून्य लगा दूंगा तो 700 बन जाएगा. अब मेक इट ग्राम, यानी कि 700 ग्राम कम से कम फल मुझे खाना है 12 बजे से पहले पहले. अधिक कितना भी खा सकते हैं. और कहीं अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो जरूरी है कि मीठे फल जैसे आम है, चीकू है, अंगूर है, ये ढेर सारा खाएं. जितना ज्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी आपका डायबिटीज गायब हो जाएगा. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. तो आम का सीजन जब होता है तो हम 1 किलो 2 किलो आम तो खिला ही देते हैं अपने पेशेंट्स को, आप घर पे कर सकते हैं. तो 12 बजे तो कुछ और नहीं खाना है, ना रोटी, ना चपाती, ना नूडल्स एक्सेट्रा. अब लंच एंड डिनर, जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2. प्लेट 2 में आपको वही रखना है जो अभी तक खाते थे, रोटी सब्जी दाल चावल एक्सेट्रा, उसमें कोई कमी नहीं करनी है. लेकिन उससे पहले प्लेट 1 जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, 4 तरह की कच्ची सब्जी लीजिए जो आपको लगता है कच्चा खा सकते हैं. टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी, शिमला मिर्च वगैरह वगैरह, जो आपको लगता है आप कच्चा खा सकते हैं या फिर स्टीम करके खा सकते हैं. अब उसको अगर दवा के रूप में आप चाहते हैं कि वो काम करे तो उसकी खाने की क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg × 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम. तो 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो फूड है, अगर मैं 350 ग्राम के आसपास खाऊंगा देन इट बिकम्स ए मेडिसिन. तो इतना वेजिटेबल कच्चा खाने के बाद, साथ नहीं बाद, अब आप प्लेट 2 यानी कुक्ड फूड भरपेट खा सकते हैं. अगर दिमाग में थोड़ा भी ये शक है इतना सारा सलाद खाने के बाद मेरा पेट भर जाएगा, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा और, तो आप देखेंगे कि आपकी एपिटाइट, आपकी भूख, आपका मेटाबॉलिज्म उल्टा बढ़ जाएगा 2-3 दिन के अंदर. और जितनी रोटियां अभी आप खाते हैं उतनी या उससे अधिक खाने की आवश्यकता पड़ेगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप पहले सलाद पेट भर के खा चुके हैं. प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में भी यही करना है और डिनर में भी यही करना है. याद रखिए, लंच ऑब्लिक डिनर. एक आखिरी छोटी सी बात और वो ये कि 2 तरह की चीजों को छोड़ दीजिए. जो भी चीज पैकिंग में आती हो, पैक्ड होती हो, फैक्ट्री से आती हो, और जो भी चीज जानवरों से आती हो. जानवरों से कौन सी चीज आ सकती है, अंडा, मीट, मछली या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ. छोड़ के देखिए एक बार, जिंदगी भर लेते रहे हैं, और कुछ चीजों को जोड़ लीजिए. स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, मुट्ठी भर खा लीजिए जब मर्जी, 6 बजे के बाद नहीं, शाम के उसके बीच में एज ए स्नैक्स. फल 12 बजे के बाद भी खाया जा सकता है एज ए स्नैक्स. धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठ सकते 40 मिनट तो 20 मिनट बैठिए, 20 मिनट भी नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट तो बैठ ही लीजिए. तो अब जो मैंने आपको बताया, दिस इज वॉट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट, राइट, अलॉन्ग विद द टाइम एज मेडिसिन. एक आखिरी मेडिसिन का जिक्र करेंगे यहाँ पे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड विद दैट वी कंक्लूड, दैट इज 0 वोल्ट मेडिसिन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई पैसा भी खर्चा नहीं होना है. आप देख रहे हैं जितनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ आपको दिख रही है उसमें सारे के सारे अर्थिंग से कनेक्टेड है, यानी कि जो ऊपर वाला पिन होता है उससे जुड़े हुए हैं. अगर किसी कोई भी आप में से इलेक्ट्रिशियन बैठा है तो उनको अगर पूछेंगे कि अर्थिंग से क्यों कनेक्ट किया, उसके बिना तो भी तो चलेगा, तो बोलेंगे एक बड़ा कारण है कि अर्थिंग से कनेक्ट करने से ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज्यादा लंबा चलते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है. आपके घर का फ्रिज, आपका घर का टीवी भी अर्थिंग से जुड़ा है. लेकिन इंसान, जैसे अभी आप बैठे हैं, कंक्रीट पे बैठे हैं या फर्श पे बैठे हैं और जूते पहन के बैठे हैं, तो आप अर्थ से कनेक्टेड नहीं है. सारे जानवर अर्थ से कनेक्टेड है बिकॉज वो जूते नहीं पहनते हैं, वो जंगल में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंजीनियर से वो समझें कि अभी आप यहां से बाहर निकल के जाएंगे, अपना जूता उतार के जहां आपको मिट्टी मिले, घास मिले, जैसे ही वहां पे रखेंगे, विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आपका बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा. वोल्ट मीटर अगर यहां पे है तो चेक करके मैं दिखा सकता हूं, आप में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो वो देख सकते हैं. अभी अगर आपका वोल्टेज चेक करें, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वोल्टेज चेक करते हैं, तो वो 0 आप में से किसी का नहीं होगा, ना ही मेरा 0 होगा. हम सबकी वोल्टेज होगी थोड़ी बहुत 0.2486. वोल्टेज जब हमारी 0 हो जाती है तब हमारी इम्यूनिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है. और वोल्टेज को 0 करने का सिर्फ एक ही तरीका है, धरती माँ के पास जाना, धरती को डायरेक्टली छूना. और जैसे ही छूते हैं तो धरती से लगातार इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में आती है और आपकी वोल्टेज 0 हो जाती है 10 सेकंड में. लेकिन अगर आपने 20 मिनट तक वहीं पे धरती के साथ जुड़े रहे, चेयर लेके बैठे रहे और पैर धरती पे हैं डायरेक्टली तो जो स्ट्रेस है, मूड है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगती है, स्ट्रेस कम होने लगता है। और कहीं अगर 45 मिनट्स तक अगर आप धरती से जुड़े रहे तो हार्ट की पेल्पिटेशन दैट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। एक घंटे में अलग अलग तरह का ज्वाइंट पेन उसमें तुरंत ही लाइक ए पेन किलर आराम मिलने लगता है। अगर एक दो घंटे आप धरती से कनेक्ट रहेंगे तो उस रात की नींद अच्छी होगी। हम अपने हॉस्पिटल में ओवरनाइट पेशेंट को धरती से कनेक्ट करके रखते हैं थ्रू अ वायर, कंडक्टिव वायर, तो उनकी हीलिंग फास्ट होती है। हीलिंग फास्ट आपकी तभी हो सकती है जब आपकी इम्यूनिटी पीक पे हो। इम्यूनिटी पीक पे होने के लिए आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप डायरेक्टली धरती से कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह से अगर रोज आप कुछ समय धरती से कनेक्ट रहेंगे तो धरती जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन भेजता है तो उससे आपका बीपी और शुगर भी अच्छी तरह कंट्रोल होता है। तो खैर, ये तीन तरह की दवाइयां हैं जो आपको रोज लेने की कोशिश करनी है एटलीस्ट, और आप देखेंगे कि रिवर्स करना बीमारी बहुत ही आसान है और लगभग फ्री है। विद दिस आई कंक्लूड माई दिस लिटिल बिट प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वरूप चौधरी जी का। आपने बहुत सुंदर बताया, अगर हमें अपने जीवन को भी खुशनुमा बनाना है तो तन और मन को स्वस्थ भी रखना है और स्वच्छ भी रखना है। और तन के स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन, मन के स्वास्थ्य के लिए भी मेडिटेशन आवश्यक है, लेकिन तन को और हेल्दी बनाने के लिए जैसे बताया गया, अगर हम सात्विक आहार लेते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं और अपनी जीवन शैली को थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो हमारी तन की शुद्धता भी बढ़ती जाती है। अभी हमारे बीच में है आदरणीय श्री सुशांत सेना जी। आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, नोएडा से। आपसे निवेदन है, आकर अपने आपको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, प्लीज गिव योर एक्सेप्टेंस स्पीच।
ओम शांति। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए और सम्मानित करने के लिए। हालांकि मैं जब यहां आ रहा था तो मैं कह रहा था कि मैं तो सिर्फ सुनने जाऊंगा, मैं बोलूंगा क्या, हम लोग तो न्यूज वाले लोग हैं, हमारी वजह से तो तनाव बढ़ रहा है, हम क्या तनाव घटाएंगे। लेकिन यहां आने के बाद ऐसा लगा कि आना सफल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। स्पेशली हमारी न्यूज इंडस्ट्री में बहुत तनाव है और वो हम नहीं पैदा कर रहे, आसपास इतना तनाव है, चल रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं अलग तरह की लड़ाई चल रही है, अलग अलग जद्दोजहद है, पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, हम उसको कवर करते हैं, छोड़ भी नहीं सकते। और इसलिए जब वो दिखाते हैं तो कई बार हम पर भी आरोप लगता है कि हम समाज में तनाव बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, लेकिन जो है, जो दिख रहा है वो हम दिखा रहे हैं। पर यहां आकर ये भी समझ में आया कि हमको भी थोड़ा अपने अंदर झांकना चाहिए। जिस इनर हेल्थ की बात यहां की जा रही है वो हम सबके लिए जरूरी है। और जब हम न्यूज बनाते, मेरा एक शो आता है न्यूज की पाठशाला रात 9 बजे, यहां आकर मुझे लगा कि हमें अध्यात्म की पाठशाला में पहले लौटना चाहिए, सनातन की पाठशाला में लौटना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ उसी काम के लिए आए थे। अभी सुबह मैं सिस्टर शिवानी का कार्यक्रम देख रहा था, उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला, मैंने उनका एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्द आएगा। तो मैंने उनसे भी कहा कि यहां जो हम चीजें आज आपसे सुन रहे थे, सीख रहे थे, ये बातें तो हर स्कूल में भी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अब तो हमारी जो बाल्टी है वो भरी हुई है और उसका पानी हम क्लीन करने जा रहे हैं। जो बाल्टी भरनी शुरू हुई है उसमें ही अगर क्लीन पानी भरेंगे, साफ पानी भरेंगे, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए जो यहां सनातन के बारे में, स्वयं के बारे में हम सीख रहे हैं, ब्रह्म कुमारीज में जो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और बतौर पत्रकार हमारे लिए ये मौका रहता है कि हम प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, दूसरे बड़े नेताओं से मिलें, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये बात मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत जरूरी हिस्सा है। जितने कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहे हैं उनका बढ़ना तभी रुक सकता है जब हम यहां जो सीख रहे हैं वो हर आदमी के अंदर जाए। दूसरी बड़ी चीज जो मुझे महसूस होती है कि जैसे हमारे लिए न्यूज है या मेरा शो है, हमारे लिए रोज गड्ढा खोदो रोज पानी निकालो वाला हिसाब है। और आज आप कितना भी अच्छा पानी निकाल दें, कल फिर वो गड्ढा नया खोदना पड़ता है, नया पानी निकालना पड़ता है। वैसे ही जीवन का हिसाब है, हम जो यहां सीख रहे हैं उसको रोज इंप्लीमेंट करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम में से जितने लोग किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, किसी से अस्पताल मिलने जाते हैं, हमारा पहला भाव ही यही होता है कि क्या कर रहे हैं जीवन में, इतना पैसा कमा के क्या करेंगे, इतना लड़ाई झगड़ा करके क्या करेंगे, भाई भाई में जो जमीन की लड़ाई है वो करके क्या ही करेंगे, सब तो छोड़ के चले जाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां से निकलने के 15 मिनट के अंदर सब चला जाता है। तो इसलिए लड़ाई इस बात को समझने भर की नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या सही करना है, लड़ाई इस बात की है कि हम उसको रोज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहीं सुना और अभी बात भी हो रही थी कि हम खुशी को ढूंढ रहे हैं कि कहां खुशी मिलेगी, चीजों में, सामानों में हम खुशी को ढूंढ रहे हैं, जबकि अगर आप देखेंगे कि हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस, आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो जीवन है, ईश्वर ने, प्रभु ने जो आपको दिया है, उसमें खुश कैसे रहना है वही आपकी खुशी है। इसको रोज महसूस करना ही, प्रैक्टिस करना ही असल खुशी है। और ये बात जब आप यहां आए, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, तो अंदर की चेतना जागती है तो और प्रखर होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, सनातन ने जो सिखाया उससे जुड़ने की क्या जरूरत है, घर में पूजा पाठ की जरूरत क्या है, रोज पूजा करना कूल नहीं है। देखिए, प्रकृति ने भी जो चीज दी है अगर उससे रोज नहीं जुड़िएगा तो दुष्प्रभाव क्या है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके शरीर में विटामिन डी की कमी है। इतनी प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी मौजूद होने के बावजूद हम में से 90-95% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। उसी तरह जब आप अपने सनातन से कट जाएंगे, आप उसका प्रभाव क्या है ये समझ नहीं पाएंगे। और हम ऐसे ही नहीं कटे, एक पूरा प्रयास हुआ है कि कैसे धीरे धीरे उसको काटा जाए, दूर किया जाए, हमारी संस्कृति में जो चीजें हैं उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाए जाए। जब ये कहा जाता है कि हम जो कर्म करते हैं वो अगले जन्म में भी हमको उसका फल भुगतना पड़ता है, जो सिस्टर शिवानी सुबह बता रही थी कि बॉल आप फेंकते हैं तो वो कभी धीरे आएगा, कभी अगले जन्म में आएगा, कभी उसके अगले जन्म में आएगा। लेकिन भाई कई बार ये भी कह दिया जाता है कि पुनर्जन्म होता है, ये किसको पता, किसने देखा है, देखा तो हमने ईश्वर को भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं। और जिन चीजों को मानते हैं, जिन चीजों में विश्वास करते हैं, वही जीने का आधार बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको सनातन से जुड़ने की जरूरत है। जैसे सूर्य की रोशनी हर तरफ है, लेकिन जितना सूर्य के करीब जाइएगा उस तपिश को आप और महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर सब तरफ है, लेकिन जितना आप उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, दूसरों के लिए अच्छा कीजिएगा। भाई हम कहते हैं हमको ईश्वर चाहिए, लेकिन जिस ईश्वर ने सबको बनाया उसकी बनाई हुई कृति के साथ ही हम गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो ईश्वर हमसे कैसे खुश हो सकता है। आपके बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा आप उससे खुश हो सकते हैं, नहीं हो सकते। वैसे ही ईश्वर ने अगर हम सबको बनाया और हम एक दूसरे के साथ ही युद्ध लड़ रहे हैं तो ईश्वर को पाने का माध्यम और रास्ता वो तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि हम उससे जुड़ें, सनातन से जुड़ें, उसके लिए प्रयास करें। और ये रोज रोज का प्रयास, यही हमारे लिए, हम सबके लिए जरूरी है। जैसे अभी सिस्टर शिवानी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये भारत का समय है। जब ये लाइन कही जाती है तो इसको भी पॉलिटिकल लाइंस में तोड़ दिया जाता है कि भाई फलाना सरकार है इसलिए कहा जा रहा है कि भारत का समय। ऐसा नहीं है, ये सच में भारत का समय है। और ये समय हो सकता है और बेहतर अगर हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकालें। अभी यहां आने के पहले, मंच पर आने से पहले मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा न्यूज की पाठशाला में हम प्रयास करते हैं देश में क्या अच्छा हो रहा है ये भी बताएं, क्योंकि दुनिया का कोई देश बता दीजिए जहां कुछ खराब ना हो रहा हो। मीडिया तो वैसे ही क्रिटिसिज्म झेल रहा है कि हम खराब चीजें, सेंसेशन वाली चीजें ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दें, ना दिखाएं क्योंकि कुछ लोगों को किसी व्यक्ति विशेष या आइडियोलॉजी विशेष से दिक्कत है, ये मुझे लगता उचित नहीं है। और बतौर भारतीय मुझे गर्व महसूस होता है जब हम बाहर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, हमको दिखता है कि कैसे दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं नीचे आई हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं और हमारे यहां हम ये देख रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग नीचे ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, या हमारे यहां अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। तो मुझे लगता है हम इन चीजों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जब राम राज्य की बात करते हैं उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। एक कोई क्राइम हो जाए, चाहे किसी महिला के साथ रेप हो जाए, छेड़खानी हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, हम उस राम राज्य शब्द का भी मजाक बनाते हैं। आ गया तुम्हारा राम राज्य, कहां है राम राज्य? पर वो लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी तो है। वो राम राज्य उस राज्य के लोगों से भी तो आएगा जो वहां रह रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं कि कोई लड़की, कोई महिला सड़क पर इसलिए नहीं छेड़ी जाती क्योंकि वहां दो मनचले या दो आवारा किस्म के लड़के थे, वो इसलिए छेड़ी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि वहां जो आठ और लोग थे उन्होंने नजर फेर ली है सोच के कि ये मेरी बेटी थोड़ी है, कौन इस पछड़े में पड़े, कौन FIR लिखवाए। और जब हम वो नजर मोड़ते हैं तो हम उस राम राज्य को आने से रोकते हैं। जब हम ऐसी किसी घटना पर चुप रहते हैं तो हम उस राम राज्य को आने से रोकते हैं। और इसीलिए जो यहां सिखाया गया कि हमारी सोच, हम क्या सोच रहे हैं, उसका पवित्र होना सबसे जरूरी है। तो वो पवित्रता सिर्फ अपने भर के सोचने भर तक ना हो, अपने पड़ोसी के लिए भी हो, अपने दोस्तों के लिए भी हो, अपने समाज के लिए भी हो और अपने देश के लिए भी हो कि हम अपने देश के लिए क्या सोचते हैं। और जब देश के लिए सोचते हैं तो धर्म और राजनीति दोनों से ऊपर उठकर सोचिए, क्योंकि ये दोनों तभी बचते हैं जब हमारा देश बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, बुलाया। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशांत जी का आपकी सुंदर भावनाओं के लिए। ब्राता जी, आपको बताना चाहेंगे, आपने कहा आप चलाते हैं न्यूज की पाठशाला, लेकिन जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये वो स्थान है जहां परमात्मा की पाठशाला चलती है, जहां स्वयं परमात्मा आकर अपना ज्ञान देते हैं और ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं जैसे आज भी उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा वो कहलाई जाएगी जहां हमारा हमारे मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी ना नेगेटिव हो ना व्यर्थ हो, ऐसी हमारे मन में शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं हो। और उसके लिए हमें चाहिए, जब हम स्व को पहचानते हैं, अपनी रियल, जो हमारा रियल सेल्फ है, उसकी पहचान मिलती है और उस परमात्मा की पहचान मिलकर हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो मैं निमंत्रण देना चाहूंगी हमारी आदरणीय राजयोगिनी सुषमा दीदी जी को। आप सब जोन हेड हैं जयपुर से और 50 वर्षों से अधिक समय से ये एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में कई अनुभव लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और आप मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं। आपसे निवेदन है कि हमको उस परमात्मा की पहचान और उस परमात्मा से कनेक्ट भी करने की एक छोटी सी विधि हमारे समक्ष रखेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी जी,
ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, ज्ञान सागर, शिव पिता परमात्मा की संतान, सर्व आत्माएं हमारे मंच पर बैठे हुए विद्वत अनुभवी जन, आदरणीय भाई एवं बहनें, सभा में उपस्थित प्रभु रतन, हमारे सब प्रिय भाई एवं बहनें, आज का विषय एक सुंदर विषय है। जहां हम थॉट्स, इंटेंशन एंड एक्शन की बात कर रहे हैं, हमें थॉट तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है। मन में जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संकल्प हैं, जो हम सोचते हैं, एक्शन भी बहुत जल्दी समझ आता है कि हम जो कर्म करते हैं वह कर्म हम अच्छे करें। लेकिन बीच में एक शब्द है इंटेंशन, जो हमारे मन की भावनाएं हैं, हमारा जो एटीट्यूड है वो कौन सा है। हम किसी से मिलते हैं किस लिए मिल रहे हैं? मेरा कोई स्वार्थ है? मुझे कुछ लेना है? क्या बदले की भावना है? अगर ये इंटेंशन होगा तो सोचें, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश कैसे सुखी होगा, कैसे खुश होगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी जाती है, उसका प्रथम चरण ही ये है कि हमें अपने इंटेंशन, एटीट्यूड, मन की भावनाओं को शुद्ध बनाना है। कोई कैसा भी हो, सबके लिए अपने मन में ये भावना पक्की करनी है कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आत्मा के नाते आपस में भाई भाई हैं। और जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं तो भाई बहन हैं। अब बताइए, भाई भाई से दुश्मनी क्यों करेगा? भाई बहन से दुश्मनी क्यों करेंगे? और ये मेरा अभ्यास पक्का हो, मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रहे थे अभी कि ये बहुत जरूरी है, रोज रोज की पाठशाला हो। आपको सुनकर खुशी होगी कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां प्रतिदिन अपने अपनी सुविधा अनुसार समय निकालकर कोशिश करते हैं 1 से 2 घंटा तो जरूर बैठकर प्रैक्टिस करें। उसमें भी प्रातः 3 बजे से ही हमारे बहुत से भाई बहने इस अभ्यास को करने लग जाते हैं 3 से 4, 4:30, 5 बजे तक। आप सब आए हुए भाई बहनों से मेरा अनुरोध होगा, अगर हम सवेरे 5 बजे उठकर पहले पहले अपने अंदर ये शुद्ध संकल्प, शुद्ध भावनाएं पैदा करें, अगर आप 15 मिनट से आधा घंटा तक इनका अभ्यास करते हैं और उसके साथ साथ प्रयास करें, अगर हम 5 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक साइलेंस में रहें, कोई बहुत जरूरी बात है बोलने की तो बोलें, कुछ कहना भी है तो धीरे सॉफ्ट वॉइस में कहें, लेकिन शांत रहें, अपने मन को शांत रखें। हमारा ये जो फोन खिलौना है इसको भी तब तक के लिए जरा आराम करने दें, और रात को सोने से पहले 1 घंटा अपने आप को सब चीजों से डिटैच करें, चाहे वो फोन है, कुछ भी है, जो करना है पहले कर लीजिए, मना नहीं है, ये हमारी जरूरत है, लेकिन सोने से पहले 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा हम थोड़ा अपने भीतर में जाएं और अपने से पूछें, मुझे सचमुच क्या बनना है, क्या करना है। क्योंकि कहा गया है जो करेंगे सो पाएंगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। मैंने आज सारा दिन में कितना अच्छा बीज बोया है, अगर नहीं बोया गया तो अभी भी सोने से पहले आधा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट तो कुछ अच्छे बीज बोलूं, तो सबसे अच्छा बीज है मेरी शुभ भावनाएं। तो अब मैं आपको ले चलूंगी उस यात्रा की ओर जहां हम अपने अंदर शुभ भावनाओं को क्रिएट करते हैं और उनके द्वारा स्वयं को भी शक्तिशाली बनाते हैं, अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध बनाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा सीधा होकर बैठे, अपने को अलर्ट करें, आपके हाथ में अगर कोई भी चीज है तो आप उसको छोड़ दें और अपनी बैठक को थोड़ा सीधा अलर्ट रखें, हो सके तो नेत्र खुले रहें, अगर आपके नेत्र बंद होते हैं तो प्लीज अपने को अलर्ट रखें, और मैं आपको कुछ संकल्प देती जाऊंगी, आप प्रयास करें उन संकल्पों के भाव को अपने अंदर क्रिएट करें। तो चलो चलें अपने भीतर की ओर, अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीचों बीच ले आएं, जहां हम तिलक लगाते हैं, स्वयं को स्वयं ये जागृति दिलाएं, मैं मस्तक के बीचों बीच एक चैतन्य शक्ति शुद्ध आत्मा हूं, अति सूक्ष्म मैं आत्मा, सर्व संबंध निभाने वाली चैतन्य शक्ति हूं, हर कर्म हर जिम्मेवारी को निभाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान हूं। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति, पवित्रता, स्नेह, सर्व के लिए कल्याण की भावना है। मुझ आत्मा के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ये वाइब्रेशंस, ये ऑरा मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली बना रहा है और मेरे आसपास के वातावरण वाइब्रेशंस को भी शुद्ध पवित्र बना रहा है। मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। उस पिता परमात्मा का प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है, महसूस करें। ये परमात्म प्रकाश ही मुझ आत्मा के लिए आशीर्वाद वरदान है। सचमुच मैं शुद्ध पवित्र आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा, ईश्वरीय स्नेह ईश्वरीय वरदानों में पलने वाली मैं आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, वह मुझ आत्मा का भाग्य है जिसे सर्वशक्तिवान का प्रकाश आशीर्वाद मिल रहा है। उस शिव पिता की संतान मैं एकदम प्रसन्न मौज में हूं, स्वस्थ हूं, शक्तिशाली हूं। तहे दिल से शिव पिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करें, संकल्प करें, मुझे जीवन में अब बस आगे ही आगे बढ़ना है, ईश्वरीय वरदान आशीर्वाद प्राप्त करना है। पुनः मैं शुद्ध आत्मा शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया में, इस छत्र छाया में रहते हुए मैं आत्मा अपना कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही हूं। नेत्र खोलें, अपने पास में बैठे हुए भाई बहन को थोड़ा मुस्कुराकर एक दूसरे को देखें और मन की शुभ भावना दें, आप भी सदा प्रसन्न रहें, मैं भी सदा प्रसन्न रहूं। ओम शांति। अवश्य ही ये अभ्यास प्रातः उठने के बाद और रात्रि सोने से पहले करेंगे, आप अपने जीवन में सदा आनंदित रहेंगे। आप सबका जीवन आनंदमय हो, प्रसन्न हो, प्रभु कृपा से संपन्न हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा दीदी जी का, हमें इतनी सुंदर आंतरिक यात्रा पर आप लेके गए और जिसके सिर पर स्वयं परमपिता परमात्मा का हाथ हो, उसकी छत्र छाया हो, तो निश्चित ही जीवन कितना श्रेष्ठ, सुखी और अगर कहा जाए शक्तियों से भरपूर होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में हैं आदरणीय श्री राज दीपक रस्तोगी जी, आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजस्थान हाई कोर्ट से हैं, तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी कि हमारे बीच में आप अपने श्रेष्ठ अनुभवों को रखें। आदरणीय श्री राज दीपक रस्तोगी जी,
प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये शब्द ओम शांति, हम हरिओम तो बोलते हैं घर में, ओम शांति का उच्चारण पहली बार सुना और दिल को आत्मसात कर गया। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा। ब्रह्मा कुमारी से मेरा कोई पुराना जुड़ाव कभी नहीं रहा। अभी कुछ समय पूर्व कुछ दीदी और एक भैया वो मेरे कार्यालय आए और इस कार्यक्रम की सूचना दी कि इसमें आपको रहना है। मैं निश्चित रूप से छुपाऊंगा नहीं कोई, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम भी रहता है और मैंने उनको भरसक प्रयास किया किसी तरह से टाल दूं कि मेरे पास समय नहीं है, जो सामान्यतः रहता है, बहाने भी होते हैं, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। दीदियां और वो भाई लोग, उन्होंने कहा भाई साहब एक बार आइए आप और आप देखिए आप जिस प्रोफेशन में हैं। हमारा प्रोफेशन फुल ऑफ टेंशन है, जहां बहुत लंबा काम करना पड़ता है हमको, इससे कहीं हटकर आपको एक अनुभूति होगी। और मैं कह सकता हूं कि मैं वो उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिनको यहां आने का सुअवसर मिला। मैं एक दिन से यहां हूं और माउंट आबू भी गया। मैंने जो देखा, अभी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी को मैं एक शब्द में डिफाइन कर सकता हूं। वकील एक आर्गुमेंट को घंटों भी चला सकता है और कुछ शब्दों में भी कर सकता है। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी को डिफाइन करूंगा एक शब्द में, तो आप वो हैं जिनमें अपनत्व की भावना कूट कूट कर भरी है और आप दूसरे को अपना दिल से लगाते हो और वो आपका हो जाता है। दिस आई कुड लर्न फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी एंड शॉर्ट। As I said, I am fortunate, और मैं केवल अकेला नहीं आया, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर शोभा, शी इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर इन शी इज हेयर, माई ब्रदरला, दे ऑल्सो सेड कि हम भी चलेंगे, वो भी सामने बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी मैंने जिन विद्वजनों को सुना, मैं विषय पर बात करूंगा तो मेरे लिए बहुत छोटा सा हो जाएगा। जहां इतने विद्वजन, जहां हुजूर साहब, जहां सुशांत जी, जहां सुषमा दीदी, अनेकों अनेक डॉक्टर भाटकर साहब, पीटर साहब, जहां एक से एक विद्वजन जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने ओस से आपको कुछ बातें बताई, तो मेरे लिए तो ये बहुत दुरू काम है। और अंत का जो स्पीकर लगभग होता है उसके लिए तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको निभाऊंगा। हम तो एडवोकेट्स हैं, आर्गूमेंट्स की हमको बहुत आदत रहती है। मैं ओम, आपने ओम शांति, इस पर मैं बहुत प्रकाश नहीं डालूंगा, मेरा ज्ञान बहुत लिमिटेड है। ओम ब्रह्मांड का एक नाद है, ओम तीन शब्दों से बना, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। जब शिव की खुद की स्वयं की उत्पत्ति ओम शिव से निकला शब्द ओम, उसमें आपने शांति को जोड़ दिया, तो शिव तो अपने आप साक्षात आपके सामने है, ये ओम शांति है। विषय जो मुझे दिया, जो आज का विषय है, वैचारिक शुद्धता, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, इंटेंशंस का मतलब इरादा, आशय, एंड एक्शन का मतलब कर्म। वैचारिक शुद्धता, आशय और कर्म, इन तीनों का प्रबंधन देखिए। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतने अच्छे वक्ता इस पर बोल चुके, अगर मैं बोलूंगा तो वो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, जहां वैचारिक शुद्धता है और अगर उसका सामंजस्य इंटेंशंस और एक्शन से है वहीं शांति है, नहीं तो घोर अशांति और विध्वंस है इसमें। जहां वैचारिक शुद्धता, इंटेंशन और एक्शन तीनों का समागम, देयर शुड बी अ बैलेंस, तीनों का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, वहीं हमारा कल्याण है। और ब्रह्मा कुमारीज ने आज इस विषय को रखा, मैं समझता हूं ये एक बहुत समीचीन, बहुत आज का विषय था। अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, कम समय है मेरे पास, उसमें मैं समाप्त करूंगा बात को। मैं आपको त्रेता युग में ले चलता हूं। त्रेता युग में आप सब जानते हैं प्रभु राम, रघुवंशी राम, रघुवंशी राम से पहले भी तो कोई थे, सूर्यवंशी इक्ष्वाकु, जहां से राम का उद्गम हुआ, सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा थे और उनका बहुत बड़ा राज्य था कौशलपुर। और ये वंश जो कौशलपुर वंश कहलाता था, उसमें राजा दशरथ, राजा दशरथ मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, राजा दशरथ के घर में हंसी खुशी का माहौल, चार बच्चों का जन्म, राम ज्येष्ठ, तीन भाई और, सब जानते हैं, बहुत बड़ा पूरा परिवार, शिक्षा हुई बच्चों की, बच्चे बड़े हुए, वो बच्चे नहीं थे, वो तो प्रभु थे, प्रभु श्री राम। जब वो अध्ययन कर वहां से लौटे तो राजतिलक होना ही था उनका, राजतिलक की तैयारियां हो रही हैं कौशलपुर में, साकेत उसकी राजधानी, जिसको अयोध्या कहते हैं अभी हम, वो साकेत है, वहां राजतिलक की तैयारियां हो रही हैं। अब देखिए, वैचारिक अशुद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण अगर इतिहास में आता है त्रेता युग का, तो वो किसका था? रामायण क्यों लिखी गई? रामायण किसी और की नहीं, एक व्यक्ति जिम्मेदार था रामायण के लिए, क्या रावण? नहीं, मंथरा। वैचारिक अशुद्धता का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल इतिहास में नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लीजिए। वैचारिक अशुद्धता मंथरा के हृदय में आई, उस वैचारिक अशुद्धता के पीछे इंटेंशन था कि इस घर को बर्बाद करना, यह उसका इंटेंशन था, और उसने उसको तीसरी किया कर्म। वैचारिक अशुद्धता, इंटेंशन, कर्म, तीनों का समागम हुआ। केकई के पास गई, केकई राम के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह था, मां केकई कहती है क्या तू बता रही है, ये नहीं हो सकता। अरे महारानी साहिबा, पुत्र तो आपका ही राजा बनना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये वृतांत है, मैं बहुत ज्यादा वेद उपनिषद पढ़ता नहीं हूं, कुछ पढ़ा है मैंने थोड़ा बहुत। उन्होंने उसको समझाया, लेकिन अब देखिए वैचारिक अशुद्धता का असर यह हुआ कि केकई का मन बदल गया, और केकई का मन बदला, वैचारिक अशुद्धता आई, इंटेंशन क्या हुआ कि मेरा लड़का भरत राजा बनेगा, और उन्होंने क्रिया शुरू कर दी। वो क्रिया क्या थी? कोप भवन में चली गई, कोप भवन में चली गई, राजा दशरथ पहुंचे, राजा दशरथ ने कहा क्या हुआ? आप सबको पता है राजा दशरथ का के प्राणों को बचाने वाली केकई थे, जब एक युद्ध में राजा दशरथ पर प्रहार हुआ ब्रह्म का कोई बहुत बड़ा अस्त्र, तो केकई उनको कुछ वरदान थे, उन्होंने दशरथ को बचाया, उस वरदान का वो बदला लेने के लिए कि राजन मैं आज आपसे कुछ मांग रही हूं, और मांगा क्या? ये राज भरत को मिलेगा। अब रघुवंशी राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा तो अपने वचनों से बंधे हुए, उन्होंने कहा ठीक है समझ जाओ, देखिए तुम्हारे वैचारिक अशुद्धता है, नहीं मानी, परिणति क्या हुई आपके सामने, वो मंथरा जो राज तिलक होने वाला था राम का, उस मंथरा ने इतिहास बदल दिया, उस मंथरा ने कौशल नरेश को उस स्थिति में कर दिया, कौशल नरेश को अपने प्राण त्यागने पड़ गए, राम वनवास गए। कौन था उसके पीछे जिम्मेदार? वैचारिक अशुद्धता, मंथरा। मैं क्या आपको कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति का वैचारिक अशुद्धता, वो केवल उसको नहीं, उसके आसपास जितने लोग रहते हैं उन सबको प्रभावित करती है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें कि वैचारिक शुद्धता, जब राम वन में जाते हैं, आप सब जानते हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, तो वहां शबरी मिली, और शबरी को यह मालूम पड़ा कि नरेश आ रहे हैं, अयोध्या नरेश, तो उनके एक जंगली बेर में कुछ इकट्ठे कर लूं, उन्होंने एक एक बेर काट झूठे कर लिए और रखने लगी चक्कर। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोली ये मेरे प्रभु आ रहे हैं, उनका कोई भी बेर खट्टा नहीं होना चाहिए, कोई भी बेर कड़वा नहीं होना चाहिए, मैं एक एक बेर चख रही हूं। ये थी वैचारिक शुद्धता, इंटेंशन प्रभु राम को अच्छे बेर दूं, कर्म कर्म तो उसका बुरा था, वो बेर झूठे कर रही थी, कर्म बुरा नहीं था, वो वैचारिक शुद्धता थी, इंटेंशन फेयर था, और झूठे बेर करके। और प्रभु राम जब वहां पहुंचते हैं तो चौपाइयां हैं, मैं अभी समय बहुत कम है, नहीं वो भी मैं बोल सकता था। और प्रभु राम ने जो वृतांत आता है कि जब शबरी के बेर खाए तो प्रभु राम को शायद कौशलपुर में इतना आनंद नहीं आया जो शबरी के बेर में आया। क्या इसके पीछे था? वैचारिक शुद्धता और इंटेंशन, एक्शन वॉज थर्ड, इसका दूसरा एग्जाम्पल था ये। अब आप देखें इसी में वैचारिक अशुद्धता का, अशुद्धता का एक एग्जाम्पल रावण। रावण तो महाबली रावण विद्वान थे, आप सबको पता है अत्यंत विद्वान थे रावण, और रावण तो पूजा कराते थे, पंडित थे, और रावण संहिता लिखी उन्होंने। रावण संहिता का आज भी योगदान है, जो ज्योतिष में रावण संहिता का बहुत बड़ा योगदान है प्रकांड पंडित। लेकिन प्रकांड पंडित के वैचारिक अशुद्धता आई कि मां सीता इनका हरण कर लें, और योगी का वेश बना के, झूठा वेश बना के उनको उठा लाए, वहां से उठा लाए। वैचारिक अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए कौन आए? राम ने निगोशिएट किया, एकदम युद्ध नहीं हुआ था वो, राम ने अंगद को भेजा, भाई छोड़ दो। विभीषण ने कहा कि महाराज ये वैचारिक अशुद्धता को निकाल दीजिए, ठीक नहीं है। रावण नहीं माने, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उस रावण की सोने की लंका का क्या हुआ? वो दहन हो गया, रावण का वंश का सर्वविनाश हुआ, वैचारिक अशुद्धता का सबसे बड़ा एक और उदाहरण। इसलिए वैचारिक शुद्धता की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। समय बहुत कम है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक उदाहरण और दूंगा आपका। अब मैं द्वापर युग में आता हूं। द्वापर में महाभारत के पीछे लोग कहते हैं कि कौन जिम्मेदार था, और मेरा ऐसा मानना है महाभारत के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और कोई नहीं, मामा शकुनी। आप उस चरित्र को पढ़िए, मामा शकुनी की वजह से महाभारत हुआ। मामा शकुनी हमेशा अपने भांजे दुर्योधन को एक सोचते थे कि किसी तरह से महाराज धृतराष्ट्र सारा का सारा राजपाट इसको दे दें, उसको भड़काते थे। वैचारिक अशुद्धता का एक सबसे बड़ा उदाहरण शकुनी है, जैसा मैंने पढ़ा, मैं उस समय नहीं था, मैं नहीं देख पाया, लेकिन जो पढ़ रहा हूं। वैचारिक अशुद्धता का परिणाम क्या हुआ? द्रुतकीड़ा, वो उसका इंटेंशन और एक्शन, द्रुतकीड़ा। पांडव हारे, 14 वर्ष वनवास में गए, वापस आते हैं, कृष्ण ने भी निगोशिएट किया, नहीं हुआ। महाराज 5 गांव दे दो, 5 नहीं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा मैं तो। और फिर क्या हुआ आप सबके सामने, इस आर्यव्रत, इस भारत में महाभारत आज से लगभग 5000 पुरुष महाभारत हुआ। और महाभारत में किसका नाश हुआ? कौरव वंश का सर्वनाश हुआ, वैचारिक अशुद्धता। मैं इसको क्यों उदाहरण दे रहा हूं कि हमारी वैचारिक शुद्धता है वही हमारे इंटेंशंस हैं, उसी तरह का हमारा कर्म होगा। जब तीनों का एक लीनियर उसमें आएंगे, एक रेखा में आएंगे तीनों, तभी इस मानव जाति का कल्याण होगा। विषय बहुत बड़ा है, मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूं, मैंने आप लोगों से सीखा है, मैं तो सुनता हूं और उसमें कुछ मैंने निकाला। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रह्मा कुमारी इसको कि मुझे यहां अवसर दिया, और अगर भविष्य में भी अवसर देंगे तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा मैं आप यहां आऊं। और मेडिटेशन का जो अनुभव सुषमा दीदी ने कराया, सुषमा दीदी जयपुर से हैं, मेरे को जानकारी आई, मैं जयपुर में ही मेरा हेडक्वार्टर है, दीदी मैं जरूर आऊंगा, और मेडिटेशन मैं आपका शिष्य बनकर सीखूंगा, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग बहुत कम जानते हैं, आप इसमें प्रकांड हैं, और आज के लिए तो ये बहुत आवश्यक है विषय। अंत में मैं अपनी बात को एक मैं शायरी भी लिखता हूं, चार लाइनों में समाप्त करूंगा, आपको समर्पित कर रहा हूं ब्रह्मा कुमारीज को, कि आवाज दी तुमने, ये ब्रह्मा कुमारीज ने मेरे को बुलाया कि आवाज दी तुमने और हम आए भी, सुनकर सुकून मिला दिल को, चलो आवाज तो दी किसी अपने ने, सुनकर सुकून मिला दिल को, चलो आवाज तो दी किसी अपने ने, और मिलने तो तुमसे भी बहुत लोग आते हैं, मैं देख रहा हूं हजारों की तादाद में, और जुलने तो हमसे भी बहुत लोग आते हैं, मगर मिलने जुलने का सबब फकत इतना, गर इत्तफाकन किसी मोड़ पर मिल जाए, दुआ सलाम तो मुकर्रर रहे, दुआ सलाम तो मुकर्रर रहे, और ये माना कि मुकम्मल जगह है तुम्हारे दिल में हमारे लिए, मैं देख रहा हूं आव भगत हमारा जितना सम्मान आपने दिया मैं कृतज्ञ हूं, ये माना कि मुकम्मल जगह है तुम्हारे दिल में हमारे लिए, मगर हम भी तुम्हें इत्मीनान दिला दें, गर दोगे आवाज कभी दिल से, हर हाल में हाजिर होंगे तुम्हारे लिए, हर हाल में हाजिर होंगे तुम्हारे लिए। पुनः मैं आप सबका आभार कि आपने इतनी अच्छी जगह बुलाया, और शायद मैं इससे वंचित रह जाता क्योंकि हम बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके बताए मार्गों पर मैं चलूं, मेरा परिवार चले और कल्याण की ओर हम प्राप्त हूं, ऐसी मेरी कामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत दिल से हमारा भी आभार भ्राता राजदीपक रस्तोगी जी को, और अभी मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री जी चिन्ना रेड्डी जी को। आप वाइस चेयरमैन हैं तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, आदरणीय श्री जी चिन्ना रेड्डी जी।
ओम शांति। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस, रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव गैदर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरा प्रणाम आप सब लोगों को। ग्लोबल समिट 2024, टुडेज टॉपिक इज स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। ए वेरी गुड टॉपिक ब्रह्म कुमारीज हैव चूजन। सिंस यस्टरडे आई एम लिसनिंग टू द मेनी स्पीचेस ऑफ eminent personalities here, and I learned so much. This is my first visit to Mount Abu. I have my association with Brahma Kumaris for more than 20 years. In my constituency, Vanapatti, we have a Brahma Kumaris ashram. My own cousin sister runs a ashram in neighboring constituency in Gadwal. For many years, she dedicated her life for Brahma Kumari's movement. In fact, the Chief Minister of Telangana, Sri A. Revant Reddy Garu, was supposed to be here, but due to his preoccupation, he asked me to represent him on his behalf. On this occasion, he asked me to convey his sincere greetings to respected Brahma Kumaris, brothers, sisters, to everybody who have gathered here. I am from Hyderabad. Hyderabad is in Dakkan. Brahma Kumari movement started in Hyderabad, that is in Sindh, later to Karachi, later to Mount Abu. After 1950, it grew like anything. They have expanded to other countries. Now Brahmakumari's presence is there in 130 countries and have more than 12 lakh membership. Most of them are women. Hamare bhaine hai, 80% of them. And Brahmakumari's samstha is managed by highly educated, highly learned, our Brahmakumari's didis. They are managing it very well. By seeing their organization, if we can hand over our country to Brahmakumaris, they can run this great country in a better manner. This is my personal feeling. Brahmakumaris, this movement, they have laid down many important guidelines how to lead our life. Like that, our Sikkim is 100% organic agriculture is there in Sikkim. The state which I come from, Telangana, we have got only 0.06% of organic farming in Telangana. That's why we have to go for organic farming, use less quantity of chemical fertilizers, less quantity of pesticides, then only we can maintain our healthy body and healthy vigor also we can maintain. This is the message of yesterday. We had been to field visit also. There our Brahmakumaris are practicing organic farming without fertilizers, without pesticides. They are really practicing. They are doing very good work there. And also, my sincere appeal to everybody, Brahmakumaris, this movement has got a great future. In coming days, in the coming years, they are going to give a spiritual way to this great country, India. We should try to, and one more thing is, the sisters who have dedicated their life without getting married, detaching from the family bondage, it's a great sacrifice. I really salute them, and also their sacrifice, their service has to be acknowledged, and we are always at their service. So when I came here, somebody told me, Dr. Mari Chennareddy, when he was the governor of Rajasthan, he did so much for our Brahmakumari movement. And also, even in Telangana and other places also, whatever help they want from us, we are lending. In future also, we will be with you. We will do our best to grow this movement for the betterment of society. With these few words, I conclude. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी चिन्ना रेड्डी जी का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए. और हमारी भारतीय संस्कृति में ये प्रथा रही है कि कब भी कोई श्रेष्ठ संकल्प करते हैं या श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हम बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं. तो आज भी हमको ब्लेसिंग देने के लिए हमारे बीच में हैं आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी. आप हरिनगर दिल्ली सब जोन के इंचार्ज हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं. आप सिक्योरिटीज विंग के भी वाइस चेयरपर्सन हैं और 65 वर्षों से अधिक समय से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं. तो हम दीदी जी से उनके आशीर्वचन सुनेंगे.
Oh. ओम शांति, सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में मानव के संकल्प, वृत्तियों और कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक संकल्प, वृत्ति और कर्म का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हम श्रेष्ठ स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आइए, समय तो बहुत तेजी से भाग रहा है, तो मैं 5-10 मिनट में ही आपको बहुत सूक्ष्म बातें बताना चाहती हूँ। आज आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतना जो विशाल रूप देख रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग पीरियड में परमपिता परमात्मा, जिनको हम सत्यम, शिवम, सुंदरम के नाम से संबोधित करते हैं, उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि परिवर्तन के वेला में प्रजापिता ब्रह्मा को इस कलयुगी संसार को परिवर्तन करने के लिए हम सब मनुष्यात्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बहुत ही शुद्ध समृद्धियां जागृत की, क्योंकि जब तक मनुष्य की समृद्धियां श्रेष्ठ नहीं होती है, तब तक उनके संकल्प, कर्म और वृत्तियां भी श्रेष्ठ नहीं बन सकती हैं। तो पिताश्री के द्वारा शिव बाबा ने श्रेष्ठ समृद्धियों में नेचुरल चेंज हमारे अंदर लाने के लिए बहुत ही आदि अनादि सत्य और अविनाशी समृद्धियों को जागृत किया, जिससे हम आत्मा के अंदर ये जागृति आई कि हम ही इष्ट है, पूज्य है, देवात्मा है, शुद्ध है, पवित्र है, शाश्वत है। जो हमारी एक संस्कार बन चुका था कि हम नीच है, हम पापी है, हम क्रोधी है, प्रभु जी हमारे अब गुणों को दिल में नहीं धरना, उस प्रभु ने हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए, हमारे संकल्प और वृत्तियों कर्मों का शुद्धिकरण करने के लिए हमारे अंदर अनादि समृद्धियों को जागृत किया। और जैसे जैसे ये समृद्धियां जागृत होती गई, तो हमारा ध्यान अंतर मन की ओर चला गया, और जैसे जैसे ये अंतर मन में आत्मा ज्यादा शुरू करती है, तो उसको सत्य का बोध होने लगता है, और जब सत्य का बोध होता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कर्मों का ज्ञान होने लगता है। और परमात्मा पिता ने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्कर का भी ज्ञान दे करके हमारे अंदर इन शुद्ध समृद्धियों को जागृत किया। और जैसे जैसे ये अध्यात्म अंतर मन में हम जाते जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ऐसी शक्ति है जो हमें अंतर मन की ओर ले जाती है, और जैसे जैसे हम अंतर मन की ओर जाते हैं, तो हमारे अंदर श्रेष्ठ, शुद्ध और स्वच्छ विचार पैदा होते हैं, जिन्हीं के आधार से ही हम अपने संकल्पों को, वृत्तियों को और कर्मों को चेंज कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भले हम बाहरी अनेक तरीके अपनाते हैं, परंतु जब तक हमने जो रूट कॉज है उसको नहीं जाना, तो हमारी वृत्तियां शुद्ध हो नहीं सकती, हमारे संकल्प शुद्ध नहीं हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक अगरबत्ती है, उसके अंदर कई प्रकार के इसेंस मिले होते हैं, परंतु जब तक अगरबत्ती को जलाया नहीं जाए तो वो खुशबू फैल नहीं सकती है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, जो सुषिप्त अवस्था में पड़ी है, जब तक राजयोगा का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि योग साधना और ज्ञान का मनन चिंतन और योग साधना के द्वारा ही जब उसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है और हमारी विल पावर स्ट्रांग होने लगती है। और जैसे ही विल पावर स्ट्रांग होती है तो हमारे संकल्पों में एक शक्ति आ जाती है। अब उनका और शुद्धिकरण करने के लिए मैं आपको और गहराई में ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जन्म जमांतर के जो कड़े मैले संस्कार हैं, दूषित संस्कार हैं, उनको चेंज करने के लिए जब तक हम जीवन की प्रयोगशाला के अंदर जाकर ज्ञान का चिंतन मंथन मनन नहीं करेंगे, शुद्ध संकल्पों के अंदर रमन नहीं करेंगे, तब तक शक्तियों का उजगार नहीं हो सकता है। दूसरा, हम उसके लिए हमारे को सवेरे अमृत वेला, जो कहा भी जाता है अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, तो ऐसे भी भक्ति काल में आप देखेंगे अमृत वेले से ही शुरुआत होती है और हमारी दिनचर्या की भी शुरुआत अमृत वेले से होती है। तो क्यों नहीं हम अमृत वेला, चलो 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे तक उठ करके भी हमें इस शुद्ध संकल्पों के अंदर रमन करना चाहिए, विचरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जिससे हमारी सुषुप्त शक्ति जागृत हो और हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्मों की कुशलता आ जाए। इसी प्रकार अन्न का भी मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा पानी, मन जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो अगर हम अपने वाणी का शुद्धिकरण करना चाहते हैं और अपने मन संकल्पों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, अपनी वृत्तियों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए अमृत अन्न के ऊपर भी हम सबको बहुत परहेज करना चाहिए। मुझे आपको सुनाते हुए ये बहुत खुशी होती है कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऊपर इस बात के ऊपर विशेष विशेष ध्यान खिंचाया जाता है कि हम जितना हो सके शुद्ध से शुद्ध भोजन खाएं, शुद्ध वातावरण में बना हुआ हो, शुद्ध पैसे से बना हुआ हो और शुद्ध हाथों से बना हुआ हो और परमात्म पिता की याद में बना हुआ हो। इसी प्रकार अगर हम अपने उस अंदर इतनी एक शक्ति परमात्म प्रेम की ज्वाला को हो, शक्ति करो पैदा करते हैं, तो उससे क्या होगा, परमात्मा का प्रेम ये एक ऐसी ज्वाला है जिससे हमारे जन्म जमांतर की मैल संस्कार धुलते हैं और जैसे जैसे संस्कार धुलते हैं वैसे ही वैसे हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे आप देखेंगे एक घरे के अंदर बहुत मैला कुचैला पानी है और उस पानी को जब तक हम नलके के नीचे नहीं रखते तो वो कैसे निकलेगा, और उस घरे के अंदर एक सुराख है या वैसे भी ऊपर से पानी बढ़ता जाता है, नीचे से सारा बाहर निकल जा, शुद्ध पानी पड़ता जाएगा और अशुद्ध पानी जो है वो निकलता जाएगा। इसी प्रकार हमारे जन्म जमांतर के अशुद्ध विचार जो है, क्योंकि अशुद्ध विचारों ने ही इस संसार के अंदर मानव के मस्तिष्क को खोखला कर दिया है, उसकी बुद्धि आज जो काम करनी चाहिए वो नहीं करती है। तो जब तक हमारी सोच और बुद्धि को शुद्ध, उसमें भी हमारी स्मृतियां जब तक शुद्ध नहीं हुई है तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान नहीं बन सकता, तब तक हम स्वर्णिम संसार की कलम भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर इस बात का विशेष विशेष अभ्यास कराया जाता है, अटेंशन खिंचवाया जाता है। इसी प्रकार हमारी जो कथनी और करनी है या आचरण और उच्चारण है वो भी एक समान होना चाहिए। और तीसरी चौथी बात, हमारा जब तक बुद्धि योग संसार के वस्तुओं से व्यक्ति से वैभव में फंसा हुआ है तब तक हमारे अंदर वो संसारिक विकार आते ही रहेंगे, और अगर हम अपने मन मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, उज्जवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को इस संसार में रहते हुए अपने संकल्पों को, अपने वृत्तियों को, अपने कर्मों को उज्जवल बनाने के लिए इन आसक्तियों से ऊपर उठना होगा, कमल सम जीवन को जीना होगा। और इसके साथ साथ ही इतने कमल सम जीवन जीने के लिए हमारे जीवन के अंदर एक बहुत भाव, जिसको कहते हैं शुभ भावना और शुभकामना। शुभावना और शुभकामना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य के दूर बैठे हुए भी वृत्तियों को, संकल्पों को चेंज कर सकती है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप सबका अधिक समय न लेकर के आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप 3 दिन से यहाँ पर पधारे हुए हैं, आपने बहुत कुछ सुना, परंतु उसके साथ साथ शुभ भावना और शुभ कामना का शुद्ध प्रसाद लेकर के जाएंगे और उसको अपने जीवन की धारणा बनाएंगे, तो आपका जीवन भी स्वच्छ, स्वत और शुद्ध और श्रेष्ठ और महान बन जाएगा, जो आप अपने आप को एक श्रेष्ठ और स्वर्णिम संसार की टिकट ले सकेंगे। तो यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अब हमारे बीच में अपनी प्रतिभाशाली नृत्य का हुनर दिखाने के लिए आ रहे हैं नृत्याश कथक डांस इंस्टीट्यूट पुणे से। नृत्याश कथक डांस इंस्टीट्यूट
प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी, मैं दिल हारी हारी, मैं
तेरे नाम सजी दूं, तेरे नाम बहुत बहुत सुंदर नृत्याश कथक डांस इंस्टीट्यूट पुणे, जोरदार एक बार तालियों से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी हम सम्मान करना चाहेंगे, दिल से आभार और स्नेह देन अभी मैं बुलाना चाहूंगी नृत्याश कथक डांस इंस्टीट्यूट के सभी बहनों को, आपका हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी और शुक्ला दीदी जी, मेमेंटो और शॉल के साथ आप ही सभी का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है, खास आप पुणे से आए हैं। हर एक मेंबर का आदरणीय दीदियां हमारा सम्मान कर रही हैं। सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री राज दीपक रस्तोगी जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, राजस्थान हाई कोर्ट, आपका भी दिल से आभार। आप यहाँ आए, समय निकाल के आप दाता जी यहाँ आए हैं। आपके भी हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी और शुक्ला दीदी जी माला के द्वारा अपना दिल का स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। और एक बहुत सुंदर मेमेंटो है जो इस परमात्मा के घर की यादगार। पगड़ी के द्वारा आदरणीय मिस्टर पीटर कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड सेल्स लैब ग्रुप यूएसए, आपका भी सम्मान। आदरणीय श्री जी चिन्ना रेड्डी जी, आप भी खास तेलंगाना से यहाँ आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, आपका भी दिल से बहुत बहुत सम्मान है। कृपा से और मेमेंटो के द्वारा आपका दीदियां सम्मान कर रहे हैं। और इस प्लेनरी सेशन 4 के समापन की ओर हम आते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय लीना बहन जी को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स की और पिछले 24 वर्षों से अधिक समय से आप समर्पित इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपको ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री भी मिली है वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, आप अपना वोट ऑफ थैंक्स दें।
ओम शांति। विश्व नियंता परम शिक्षक परम सद्गुरु परमात्मा अथा उनका साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा की सभी प्यारे संतन भाई और बहनें और मंचासीन सभी महान विभूतियों और महानुभवों का धन्यवाद करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ और मुझे खुशी भी हो रही है। और मैं आप सभी को नाम सहित मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सभी ने बहुत धैर्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, जो भी बैठे हैं आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। आप सभी जोरदार तालियों से हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। मैं नाम बताती जाऊंगी, आप सभी जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करते जाएंगे। हमारे बीच आदरणीय श्री राजदीपक रस्तोगी जी एंड श्री चिन्ना रेड्डी जी, राजयोगिनी विके सुषमा दीदी जी, राजयोगिनी विके शुक्ला दीदी जी एंड राजयोगी विके मोहन सिंगल भाई जी, उसके साथ साथ मिस्टर पीटर कुमार भाई जी, सभी ने बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पहुँचे, अपने अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा किए। उसके साथ साथ डॉक्टर परम संत हुजर कन्वर साहेब जी जो हमारे बीच थे, और उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पद्मश्री डॉक्टर विजय बी पाटकर जी, आपका भी हम तहे दिल से थैंक्स देते हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर स्वरूप राय चौधरी जी, आपका भी तहे दिल से थैंक्स है। और हमारे बीच श्री सुशांत सिन्हा जो बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच पहुँचे, अपना अनुभव विचार हम सभी के समक्ष रखे। सभी को उसके साथ साथ इस प्रोग्राम को, इस ग्लोबल समिट को पूरा सहयोग देने के लिए हमारे बीच जो भी हमारे सम्मुख हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स, साउंड डिपार्टमेंट, माइक्स डिपार्टमेंट, मीडिया एंड हम सभी मेहमान जो देश विदेश के कोने कोने से यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ साथ हमारी सुप्रिया बहन जी जो इस मंच को अच्छी तरह से परिचालित किया, उनका भी हम तहे दिल से थैंक्स देते हैं। और उसके साथ साथ हमारे डांस ग्रुप डॉक्टर शिवालय मुरलीधर जो ग्रुप है, सौरभा संगीत नृत्य कला परिषद, उनका भी हम तहे दिल से थैंक्स देते हैं। और नृत्यास कथक डांस इंस्टीट्यूट जो पुणे से आए हैं, उन सभी का, आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लीना बहन जी। और इस प्लेनरी सेशन 4 को हम यही कंक्लूड करते हैं दो सुंदर पंक्तियों के साथ। लकीर अपने हाथों की बनाना हमें आता है, लकीर अपने हाथों की बनाना हमें आता है, वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पर रोते होंगे। थैंक यू एंड ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में हम बैठेंगे और इस सेशन को कंप्लीट करें।
व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने